प्रभु आपको आशीष दे। मुझे कुछ करना है, क्या मैंने किया? भाई कैप के लड़की की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं वास्तव में प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये इस तरह से हुआ कि इस थोड़े समय में जब मैं वापस इंडियाना आया, मैं जानता हूँ कि वे इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वे नहीं कर रहे हैं, और इसलिए मैं वहाँ अंदर किसी को नहीं देखता हूँ। इसलिए मैं गिलहरी के शिकार के लिए वापस आया, और इसलिए मेरा अनुमान है कि चार्ली उसे और नैली को मेरे पास छोड़ने जा रहा है, और वे नीचे केंटकी में अब एक या दो दिन तक गिलहरी के शिकार पर। इसलिए मैं किसी भी प्रकार का मनोरंजन या कुछ भी छोड़कर तब यहाँ लगभग अगस्त के बीच में यहाँ आकर और चार्ली और बैंक्स के और उन सब के साथ गिलहरी के शिकार पर जाता हूँ। मेरे साथ ये एक रिवाज सा हो गया है, और इसलिए मैंने जो को लिया। जब यहाँ हम किसी और समय थे तो सब बीमार हो गए थे। वास्तव में उस गर्म मौसम से बदलकर आप यहाँ इस ठंडे मौसम में आ गए। मैं जानता हूँ कि आप समझते हैं कि यह ठंडा नहीं है, परंतु आप एकदम एरिजोना से आए हैं। छाया में वहाँ 109 था जब मैं वहाँ से उस प्रातः चला, और फिर रात में मध्य रात्रि के लगभग जब पहाड़ों से ठंडी हवा आती है तब भी 96 था। देखिए, ये मध्य रात्रि में जब पहाड़ों से ठंडी हवा आ रही थी, और इसलिए वो स्थान जाड़े में बिल्कुल ठीक है, परंतु वो गर्मियों में बिच्छुओं और छिपकलियों के लिए है ना, ना कि मनुष्य के लिए। यहाँ तक कि सारे पशु उन पहाड़ों से हट जाते हैं, वे भी टिक नहीं सकते। और मैं वहाँ था और अपनी छोटी बंदूक चला रहा था। मैं जो भी है, मैं आपको कैप्स लड़के के विषय में बताना चाहता हूँ। और मैंने कहा, और जॉय, मुझे बस उसे बंदूक देनी होगी, क्योंकि वो मेरा निशाना गड़बड़ कर सकता था। हमें उसी के अंदर ही मारना था, और मैं 50 गज पर खूंटी गाड़ रहा था। और मैंने जॉय से कहा, जॉय ने कहा, पिताजी मैं विश्वास करता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। उस बेचारे लड़के के सिर में दर्द और तेज बुखार था, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, और वो मेरे साथ पहाड़ों की श्रृंखला में गया। और मैं कोई भी 12 बोर 22 वाली राइफल में वो अपनी मार के 25 गज पार करके फिर से 50 पर हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 12 बोर में थी। इसलिए फिर और मैंने 25 गज पर गोली दागी, और इस प्रकार से मेरे पास दो खूंटियां और थी, और मैंने उन्हें वहां रख दिया। और यदि जॉय उन दोनों खूंटियों को ना गाड़ सका, मेरे पास और खूंटियां ना थी, इसलिए मैंने मिट्टी के कबूतर का टुकड़ा जो कि वहाँ फटा पड़ा था लगा दिया, जो कि फंदा लगाने वाले लगभग चौथाई इंच दूरी पर उस पर निशाना लगाते हैं, और उसे 50 गज पर ले गया और उसे काटकर दो हिस्से किए, और दूरबीन मेरी आंखों के अनुसार कर दी। मैं उससे कुछ ही वर्ष बड़ा था, इसलिए उसने कहा, जानते हैं क्या कहा, मुझे बिली के पास जाकर ये बताना है कि अब से इसे मेरे पैर से दूर रखें, समझे। और इसलिए मैंने कहा, देखो अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। कहा, आओ नीचे चलकर और भाई नॉर्मन को ये दिखाएंगे कि। मैंने कहा, जॉय, संसार की प्रतियोगिताओं में मैंने कभी भी चिंता नहीं की कि ये कौन है, चाहे कोई क्यों ना हो। अब वो कीले तिरछी नहीं गाड़ी गई थी, वे सीधी सीधी गाड़ी गई थी, और वो टुकड़ा मैं नहीं सोचता कि चौथाई से बड़ा था, और इंच का 1/16 मोटा और चौथा इंच ऊंचा। उसने 50 गज पर दो टुकड़े रखे थे। मैंने कहा, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस पर बढ़िया निशाना लगा सके। वे गौरव विजेता हो सकते हैं जो ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, परंतु आप उनसे तीन बढ़िया निशाने नहीं लगा सकते। वे खूंटियां मुड़ी हुई नहीं थी, केवल कागज में से होती हुई सीधी गड़ी हुई थी। और मैंने कहा, कोई भी इस पर अच्छा निशाना नहीं लगा सकता। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि उसका सिर दर्द तब ठीक हो गया। और मैंने कहा, भाई चलकर भाई नॉर्मन को दिखाते हैं, जो कि फील एंड स्टीम के लिए काम करते थे, भाई टोनी स्ट्रोमी के खेल कूद के सामान की जगह पर। उसने कहा, पहले हम बिली के पास चलें। उसने कहा, मैं केवल बबी को कुछ बताना चाहता हूँ, समझे। और फ्रेंकली उसके भाई ने कभी भी इतना बढ़िया नहीं किया, इसलिए उसने कहा, पहले हम वहाँ चलेंगे। और जैसे ही मैं दरवाजे में घुसा, बिली अब भी पजामे में था, और उसने कहा, हम जल्दी प्रातः ही चले गए क्योंकि वहाँ बहुत गर्म हो जाता है। और इसलिए उसने कहा, टेलीफोन की घंटी बजी, और मैंने कहा, वो मेरी ओर इस प्रकार से देख रहा था कि मैंने कहा, हो सकता है किसी बीमार का फोन हो। और वहाँ भाई कैप अपने लड़के के लिए, जो उस समय शल्य चिकित्सा कमरे में अंदरूनी सूजन से बीमार अनिर्णायक स्थिति में था, और अभी उसने मुझे बताया कि उसका लड़का अच्छा हो रहा है। इसलिए देखिए कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, यहाँ तक कि उस छोटे लड़के जॉय की आवाज में भी, बजाय इसके कि भाई नॉर्मन के पास जाएं, जो कि वहाँ नहीं होंगे, और वापस आए, और भाई कैप और मैंने एक साथ मिलकर मैं ये नहीं कहता कि ये हमारी प्रार्थनाओं से हुआ, परंतु उसके लिए इसका कुछ अर्थ था हमारे लिए कि उससे इस प्रकार संपर्क करें। और साफ तौर पर यही था, जब आप में जो आप कर रहे हैं उसके लिए विश्वास होता है, समझे। और ये उसका विश्वास था कि उसने फोन किया। और बिली जो था वे पैसे लगा रहे थे, उसने कहा ये तो सचमुच में बहुत दूर होना चाहिए, और कहा उसने 3 मिनट के टेलीफोन के लिए $5 के सिक्के लगा दिए। और मैं सोचता हूँ कि वो न्यूयॉर्क से या बाहर कहीं किसी टापू से टेलीफोन कर रहा होगा, परंतु उसने व्यक्तिगत टेलीफोन किया कि बिली से मिले बजाय लॉयस के, आप समझे। और इसी को करने के लिए उसे भुगतान करना पड़ा, और अब उसका लड़का ठीक हो रहा है। भाई कैप ने कहा कि डॉक्टर ने उसे बहुत थोड़ी सी आशा दी थी कि वो ठीक हो जाएगा, आपने देखा इस शल्य चिकित्सा के पश्चात। और इसके लिए आज प्रातः हम बहुत प्रसन्न हैं और धन्यवादित हैं। और आज प्रातः हम दिन निकलते हुए यहाँ आए हैं, और मैं लगभग 3 घंटे सो पाया, और मैं बहुत थका हुआ हूँ, परंतु जब आराधनालय में आने का समय आया तो क्यों मैं यहाँ आया हूँ। और मैं और अब प्रभु ने चाहा तो मुझे वहाँ केंटकी जाना होगा, जैसे कि मैंने कहा। तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि वापस आते हुए मैं एक रविवार बोलूंगा, और मैंने ये अगले रविवार को तय किया है, क्योंकि उसके बाद मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मैं फिर से कनाडा वापस जा रहा हूँ। इसलिए मैं अगले रविवार को प्रातः। और भाई नेविल ने कहा क्यों नहीं आप जरा बाहर जाकर और लोगों को अभिनंदन करके और उनसे कुछ देर बातें करके। मैंने कहा भाई नेविल, मैंने अपनी बाइबल तक भी नहीं खोली है। मैंने कहा मैं उन्होंने कहा थोड़ा बाहर जाकर और उनसे कुछ कहें। और बहन नेविल, मुझे नहीं आता कि कैसे करूं, वे दूसरे को राजी करने में बड़े सक्षम हैं, परंतु जबकि मुझे ये कहने का अवसर नहीं मिला, जब ये स्थान भीड़ से खचाखच भरा हुआ है और वगैरह वगैरह, परंतु मैं परमेश्वर का भाई ऑर्मन नेविल जैसे पास्टर के लिए आभारी हूँ। ईमानदार, जितनी ईमानदारी हो सकती है उस निमित्त के लिए, और कभी भी बुड़बुड़ाते नहीं सुना। मैं वहाँ पीछे बैठता हूँ, मेरी उनसे अच्छी आधे घंटे तक बात हुई जब मैं भाई मान के साथ आनंदित था, और इसलिए मैं इस विषय में उनको काफी कुछ बताऊंगा जब हम इस वर्ष कोलोराडो जाएंगे। और जब हम उनके संदेश में आनंद ले रहे थे और मेरे भाई नेविल के साथ अच्छी बातचीत हुई, मैंने कहा हमारे अच्छे पास्टर के विषय में कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मैंने कहा क्या लोग आपसे ठीक व्यवहार कर रहे हैं, कहा कि इससे कुछ और अच्छा हो सकता है। और मैंने कहा ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जब पास्टर संतुष्ट हो और लोग संतुष्ट हो, इससे एक बहुत अच्छी कलीसिया बनती है, और तब परमेश्वर संतुष्ट होता है। और मैं इन्हें देखकर सोचता हूँ कि ये आपस में संतुष्ट हैं, विशेषकर संदेश के इस दिन में जो कि हम चिल्ला रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये संदेश की निरंतरता को लोगों और परमेश्वर के साथ दर्शाता है, समझे। और मैं भाई ऑर्मन नेविल के लिए बहुत आभारी हूँ, और उनकी अच्छी पत्नी और परिवार के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको ईमानदार और इसके निमित्त बनाए रखेगा, और यदि ये उसको पसंद आया, होने दे कि हम आराधनालय में खड़े हों जब प्रभु यीशु हमारे लिए आए, आप देखिए, हमें बादलों पर उठा ले जाने के लिए। हम आशा करते हैं कि हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, भाई नेविल की एक दूसरे के चारों ओर हाथ डालते हुए और अपनी छड़ियों के सहारे खड़े हुए, तब भी एक दूसरे को पकड़ने का यत्न करते हुए, समझे। तब हम पलक झपकते ही पल में बदल जाएंगे, और ये पुराने शरीर के कपड़े गिर जाएंगे, और सदा के पुरस्कार को लेने के लिए उठेंगे, और हवा से निकलते हुए चिल्लाते हुए अलविदा अलविदा प्रार्थना के मीठे क्षण। तब हम ऊपर चले गए, प्रभु की ओर से भाई कुमार की चंगाई के विषय में सुना, और इसके लिए बहुत ही धन्यवादित हैं, और बहुत सी चीजें हैं। इसलिए आज प्रातः यहाँ होने के लिए मैं आभारी हूँ, और मैंने सोचा बजाय इसके मैं यहाँ हमेशा किसी खास विषय को लेता हूँ और बोलता हूँ, मैंने सोचा आज प्रातः थोड़ा बाहर निकलूंगा। और मैंने कहा भाई नेविल, मैं घड़ी का सरलता पूर्वक ध्यान रखूंगा, और हो सकता है लोगों को समय पर जाने दूंगा, और आपसे हृदय से बात करूंगा कुछ मिनट, ऐसी ही बातें केवल जो हमारे पास होती हैं। नहीं, वे इसे टेप नहीं कर रहे हैं या कुछ भी, इसलिए हम कुछ देर संगति करेंगे, जबकि केवल कलीसिया के लोग यहाँ हैं, आप देखिए, केवल हम एक साथ हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, इस विशेषाधिकार के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं कि हम यहाँ एक साथ जमा हैं। और ओ, जैसा मैंने इस आराधनालय पर आधी रात निकल जाने के पश्चात दृष्टि की, तो तो मैंने सोचा कि आप कैसे इसके पक्ष में खड़े हैं, और मैं उस पुराने तालाब के विषय में सोचता हूँ जो कि यहाँ था, और बड़ी पुरानी पुरानी घास जो यहाँ खड़ी थी, बिल्कुल यहाँ जहाँ ये प्रचार मंच है। एक छोटे लड़के के समान मैं यहाँ खड़ा हुआ। श्री इंग्राहम ने कहा कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा पड़ा हो सकता है, और कुछ उन्होंने दिया, और कोई पैसा नहीं, कोई संगी नहीं, या कोई देने वाला नहीं, परंतु केवल यत्न किया। तब फिर ये कैसे है, जैसे कि अनुमानित लागत $2,000 से थोड़ी अधिक थी, जिसका 20 वर्षों में भुगतान करना था, और अब प्रभु इसकी ओर देखता है, और जबकि ये अपने प्रारंभिक दिनों में था, अब भी गुप्त रूप में यहाँ बैठकर इसको पानी देते हैं, जैसा कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे प्रतिज्ञा की थी। मुझ प्रभु ने इसे लगाया है, मैं इसे दिन और रात सींचूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसे मेरे हाथों से ले ले। उसी समय में लोगों ने कहा 6 महीनों के अंदर ये गाड़ी खड़ी करने का स्थान में बदल जाएगा, परंतु वास्तव में हजारों प्राणों ने यहाँ वेदी पर मसीह को पाया, और आराधनालय बपतिस्मे का स्थान लगातार प्रभु यीशु के नाम लोगों का बपतिस्मा हो रहा है, और उसके नाम के द्वारा वे अपने पापों को धो रहे हैं। सैकड़ों अपाहिज, दुखी, अंधे, पड़े हुए, लंगड़े, कैंसर से खाए हुए इस मंच पर से चंगे होकर चले गए। पुरुष और स्त्रियां, लड़के और लड़कियां मरते हुए अंदर आते हैं और नया जीवन लेकर बाहर चले गए, अपनी देह पर नया मांस लेकर, अपनी पहिए की कुर्सियां, बैसाखियां और वगैरह वगैरह छोड़कर फिर से चलते हैं। ओ परमेश्वर, सेवकाई के ये 30 वर्ष, पिता मुझे वो प्रातः याद है जब हमने कोने का पत्थर रखा था, और आपने वहाँ दर्शन दिया था जिसमें स्थान को खचाखच भरा हुआ दिखाया। एक सुंदर कोना मैं जानता था कि ये असफल नहीं हो सकता, इसलिए इन बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनमें बहुत सो ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और जीवनचर्या को समाप्त किया, और विश्वास में बने रहे, अपने परिश्रमों से छूटकर वहाँ लेटे हुए आराम और प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उनके कार्य उनका अनुसरण कर रहे हैं, उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुरई की आवाज होगी और नए जीवन में उठ खड़े होंगे एक नई देह। इनमें से बहुत से बूढ़े और कपकपाते हैं, कुछ नवयुवक अधेड़ अवस्था के और वगैरह वगैरह, परंतु तेरे नाम की महिमा सबके द्वारा हो। अब हम यहाँ फिर से मरे और जीवितों के सामने खड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने वचन को इस प्रातः अभिषेक करेंगे। मैं तो कुछ भी नहीं कहना जानता, परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ही इसे समाप्त करेंगे जो कि आपने हमेशा किया है। प्रभु हमारे पास्टर भाई नेविल और उनकी पत्नी को आशीष दे, ट्रस्टियों, बोर्ड के डीकन, देह के हर सदस्य को आशीष दे। होने दे कि इस जीवन में हम एक साथ रह सकें, और उस आने वाले जीवन में हमें अनंत जीवन मिलेगा। आत्मा और वचन के द्वारा सुधरने के लिए इस प्रातः हमारी सहायता करें, ताकि हम अपने आप को जब इस प्रातः इस दरवाजे से बाहर जाते हैं तैयार कर सकें। हमारे हृदयों में ये निर्णय दे कि हम पहले से अब अच्छा जीवन व्यतीत करें। यीशु के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। मैंने अभी अभी यहाँ अपनी बाइबल खोली है, ये अभी कुछ ही मिनटों पहले हुआ। मैं प्रकाशित वाक्य 3 पर हूँ, इसलिए मैं केवल यहाँ से पढ़ूंगा उस संदेश से जो लौदीकिया कलीसिया को है। और मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूँ कि भाई नेविल अभी मुझे बता रहे थे, भाई परनेल जैसे ही मैंने नीचे देखा और मैंने उन्हें यहाँ बैठे देखा एक बेदारी सभा में मेम्फिस के इस ओर। आप में से कोई जानता है कि ये पुराना विम्पी कहाँ है? हैमबर्गर मिलने का स्थान होता था, वहाँ उनके पास एक तंबू था, उसके अंदर बैठते थे, झुंडों में उनको लाकर और ढूंढते थे कि यदि इनमें से कोई ऐसा खोया हुआ हो जो कि जीवन के लिए अभिषिक्त हो, जिसको वो अपनी मसीह की सेवकाई के द्वारा जीत सके। और वो इसे रविवार की आराधना के कारण बंद रखते थे, क्योंकि वे आराधनालय में होते थे, और ये भाइयों में बहुत निष्ठावान हैं। और हम चाहते हैं कि आपको मालूम हो कि अगले सप्ताह से सभाएं सोमवार रात्रि से आरंभ हैं, और मैं जानता हूं कि आप सब भाई परनेल को सुनने के लिए आमंत्रित हैं। भाई परनेल अपना संदेश मसीह के प्रेम का लाते हैं। अब हम प्रकाशित वाक्य 3 से पढ़ेंगे केवल एक भाग, ये कहने के लिए कि हम बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि जो मैं कहूँगा असफल हो सकता है, परंतु जो वो कहता है वो असफल नहीं होगा। और मैं नहीं जानता कि कहाँ से आरंभ करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, परंतु मैं केवल लौदीकिया की कलीसिया काल से पढ़ रहा हूँ। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। क्योंकि तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। आप जानते हैं कि जब मैं पढ़ रहा था उसमें कहीं मैं, यदि आप मुझे एक मिनट के लिए क्षमा करें, मुझे एक जगह मिली है जो मुझे अच्छी लगी, मुझे नहीं मालूम कि अब वो कहाँ है, यहाँ है ये, और तू नहीं जानता, अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा। आज की कलीसिया की इस तरह की तस्वीर है। और अब ये है, मैं सोचता हूँ कि यहाँ कलीसिया काल जिसके विषय में हम बोल रहे हैं, क्रम में इन पुस्तकों में जो मेरे पास कलीसियाई काल अब आ रहे हैं, परंतु ये लौदीकिया कलीसिया काल होने के नाते जिसमें हम हैं, हम जरा इसकी दशाओं को देखें। मैं किसी मूल पाठ या किसी चीज को नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम नहीं केवल ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि हम देखते हैं कि बात करते हुए जो कुछ भी प्रभु करने की अगुवाई करेगा, परंतु कुछ भी जो हमारी सहायता करे। आइए हम लौदीकिया कलीसिया काल और उसकी आज की दशा के लिए सोचें। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस समय मैं प्रभु यीशु के आगमन में किसी भी रुकावट को नहीं देखता, सिवाय उसकी कलीसिया की तत्परता को छोड़कर। मैं सोचता हूँ कि ये एक भविष्यवाणियों में से एक है। कल यहाँ कार से आते हुए हमने दो दिन ट्यूसान से यहाँ 2000 मील कार चलाई, बिली और मैंने, और इसलिए हमने गति सीमा के कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया था, हम ठीक रहे। यदि वो चला रहा होता तो मैं अपनी मुट्ठी बंदूक की तरह हथौड़े के समान पीछे किए हुए वहाँ बैठा था। मैं उसे उस गति के ऊपर जाते देखता तो मैं कहता, लड़के एक मिनट ठहरो, अब हमें बताया गया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो। जब हम पिछली रात्रि यहाँ आए, एक छोटी लड़की टेढ़ी मेढ़ी सड़क के बीच में पड़ी थी, लगभग 3 वर्ष की थी, माँ उधर गड्ढे में मरी पड़ी थी। कोई लड़का पिए हुए ROTC की ओर से आ रहा था और 18 वर्ष आयु का था, 120 मील की प्रति घंटा की गति से वाहन चला रहा था, सड़क की बाईं ओर मरा पड़ा था, और मुझे लगता है वो भी मर रहा था। तब आप अनुभव कर सकते हैं कि वो क्या है, कैसर को कैसर का दो। भोले भाले लोग मर रहे हैं, एक 3 वर्ष की बालिका का जीवन समाप्त हो गया क्योंकि कोई पिया हुआ सिपाही लगभग 120 मील प्रति घंटा की गति से सड़क की गलत ओर आ रहा था, ऊपर पहाड़ पर से आया और सीधी टक्कर मारी और एक साथ वहीं मार डाला, और वो भी मर रहा था। देखिए, यद्यपि निर्दोष जन समूह इस प्रकार मर रहा है, अब ये लड़का सुनियोजित हत्या का दोषी है। देखा, मैं सोचता हूँ यदि ये मनुष्य सड़क पर पिए हुए पकड़ा जाता, उसको सीधी तौर पर 10 वर्ष की जेल होनी चाहिए। उस असमय पहले से विचारी गई हत्या के लिए कोई भी मनुष्य जो इसका कारण होता है, कोई भी मनुष्य, राजनीति से कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये सड़ी हुई है। परमेश्वर का विचार राजाओं का है, धार्मिक राजा अच्छा है, परंतु राजनीति ने कुछ ऐसा ही फैला रखा है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बेईमानी, झूठ, चोरी, हर चीज। जैसा कि मैंने कुछ सप्ताह पहले कहा, और देखिए कि आप कहाँ हैं, कुछ नहीं है, केवल हर चीज का कुटिल जनसमूह। परंतु एक धार्मिक राजा अपनी व्यवस्था बना सकता है, और आप एक मनुष्य को मार सकते हैं। आप अच्छी राजनीति को जानते हैं, ये ठीक है, आप इससे बच जाते हैं, समझे। और इस प्रकार से ये प्रजातंत्र एक अच्छा विचार है, परंतु ये काम नहीं करेगा। जैसे कि कम्युनिज्म, सब वस्तुएं सामान्य है, ये सुनने में अच्छा लगता है, परंतु ये नहीं चलेगा। नहीं, परमेश्वर का तरीका राजाओं का है, जैसे दाऊद था, ठीक था। आप एक विचार केंद्रित हैं, जैसे एक मार्गदर्शक और गीज बतखों का झुंड या वगैरह वगैरह, उनमें से आप दो या तीन नहीं ले सकते, और तब आप उन सबको मिला देते हैं, आप किसी भी प्रकार के विचार के साथ आ सकते हैं। इसलिए हम आज की दशा प्रभु के आने के लिए तैयार पाते हैं। परंतु जबकि भाई नेविल और मैं और ये भाई लोग झुंड की चरवाई करने का यत्न कर रहे हैं, अब मेरे मस्तिष्क में कुछ है, वो आ रहा है ताकि हम उस विषय पर बात कर सकें। ये है, मुझे उस दिन एक सभ्य महिला का पत्र मिला, मुझे कभी नहीं मिला, ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आया, और उसने निश्चय ही मुझे तोड़ दिया या ऐसा यत्न किया। कह रही थी, क्या तुम क्रिश्चियन बिजनेसमैन कुछ ऐसा कर सकते हो कि भाई ब्रणम को रोक दो। कहा, क्योंकि उसने ये पुस्तक लुदिकिया कलीसियाई युग निकाली है और भी ला रहा है, और कहा वो केवल पेंतिकोस्तल मत के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। कहा, अब वो कह रहा है कि अन्य भाषा बोलना प्रारंभिक प्रमाण नहीं है, और कहा फिर वो महिला प्रचारकों के विरुद्ध है, और ये एक महिला प्रचारक थी, और उसके लड़के कोई उनमें से संसार में मेरे अच्छे मित्र हैं, देखिए वे मेरे उन अच्छे मित्रों में से हैं जो मेरे हैं। और उसने कहा, अब और ये मनुष्य और पत्नी, मैं उनके साथ नाश्ता खा रहा था, उन्होंने कहा भाई ब्रणम इसे देखिए, क्या आप इस पर सोचेंगे, और एक पत्र निकाला। मैंने कहा ठीक है बहन, वो नहीं समझती। उन लड़कों ने बताया कि उनकी माँ एक महिला प्रचारक थी और उसने संदेश को नहीं माना, और अब वो यहाँ कहती है, उसने कहा कि स्त्रियों को पुरुष पर अधिकार नहीं होना चाहिए। कहा कि बाइबल में फीबा के विषय में क्या है, पौलुस की सहायक, निश्चय ही वो सामान बेचने वाली थी। और पौलुस ने लोगों से कहा, क्या आप सोचते हैं कि पौलुस ने कहा होगा स्त्रियां कलीसिया में शांत रहें, उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं, और घूमकर कहता है कि अब फीबा तू समाचार में मेरी सहायक इन कुछ रात्रियों में प्रचार करने जा रही है। वो क्यों अपने ही वचन में विरोध में होगा। और कहा, इस सब से बढ़कर मैं सोचती हूँ कि एस्तर बाइबल में न्यायियों में से एक थी। कहा, एक स्त्री बाइबल में न्यायी है, क्या ये पुरुष के ऊपर अधिकार नहीं। और ये बिजनेसमैन जो यहाँ गिरजे में अधिक समय नहीं हुआ चंगा हुआ था, उसने कहा, नहीं, उसकी पत्नी ने कहा कि भाई ब्रणम ये हमेशा मुझे घबरा देता है। मैंने कहा, क्यों बहन, ये आपको कैसे घबरा देता है। कहा कि यहाँ एक स्त्री न्यायी है। मैंने कहा, वो राजनीति है ना कि कलीसिया, उसको कलीसिया से कुछ लेना देना नहीं। पौलुस ने कहा, उन्हें अधिकार में रहने दो, जैसा कि व्यवस्था ने भी कहा है, और व्यवस्था एक स्त्री को याजक नहीं बना सकती, नहीं कर सकती। आप स्त्री को कभी महायाजक नहीं देखेंगे, आपने स्त्री को कभी याजक नहीं देखा बाइबल में, कहीं भी नहीं। आपने बाइबल में स्त्री को कभी प्रचारक नहीं देखा, निश्चय ही उनमें से कुछ भविष्यद्वक्तनी थी और वगैरह वगैरह, मिरियम और दूसरी, और एस्तर उनमें से एक इसराइल के ऊपर न्यायी थी, कभी कभी वे उनके ऊपर रानी थी, और इस तरह से वगैरह वगैरह। राजा और रानी, राजा के मर जाने के बाद रानी को उसका स्थान लेना होता था जब तक वे दूसरा राजा नियुक्त नहीं करते थे, और आदि आदि। ट्यूसान एरिजोना नगर में वहाँ एक स्त्री न्यायी थी, यही कारण था कि नगर बहुत ही भ्रष्ट था। और हमारे यहाँ एक स्त्री का राजनीति में कोई काम नहीं, उसका कोई काम नहीं कि कलीसिया में कोई अधिकार रखे। घर में पुरुष की रानी उसका स्थान है, उसके बाहर वो कुछ नहीं है। और हम ये जानते हैं कि ये सत्य है। आप कभी नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं कि ये पुराने जमाने की बात लगती है, परंतु मैं उत्तरदायी हूं। और मैं जानता हूं कि मेरे इस धरती पर से कूच कर जाने के पश्चात वे टेप और वे पुस्तकें जीवित रहेंगी, और आप में से बहुत से युवा बालक आने वाले दिनों में पाएंगे कि ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैं ये प्रभु के नाम में बोल रहा हूँ। अब हमें आश्चर्य होता है कि कैसे एक स्त्री जो एक अच्छी स्त्री है और वो अपने ईमानदार पति के द्वारा इस धरती पर लाई गई है, एक अच्छा मनुष्य, उनमें से कुछ बहुत अच्छे लड़के हैं, ऐसों से मैं कभी नहीं मिला, वे पुरुष हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला। और एकदम से जैसे ही उन्होंने संदेश सुना, उन्होंने 100% अपने को इसके लिए दे दिया। अब ये केवल पहले से ठहराई हुई संघ दीक्षा से आता है, केवल यही एक जिससे ये आ सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि मैं सोच रहा था कि क्यों प्रभु मुझे वापस ला रहा था, और ये जानता है ये नहीं जानता कि तू नंगा है, कंगाल, अभागा, अंधा, और नहीं जानता। इससे पहले कि मैं इस स्थान पर आऊं, मैं संक्षेप में बता दूं कि पिछले दिनों में मैंने संदेश में क्या कहा था। मैं विश्वास करता हूं ये इस जगत का परमेश्वर यही था, लोगों की आंखों को अंधा कर दिया ताकि वे धार्मिक सभाओं में पूर्णतः शैतान की आराधना करें। क्या आप सबने समझा? क्या आप सब समझ गए? और तब उसी संदेश में मैं इस विषय को लाया कि स्त्रियां अनैतिक वस्त्र पहन रही हैं, अशिष्ट, न्याय के कटघरे में उसका न्याय सड़क छाप वेश्या की तरह किया जाएगा। ये सुनने में अजीब लगता है। मैं आपके सामने एक छोटा चित्रित करूं। अब यहाँ नगर में एक नवयुवक, एक वकील है, एक अच्छा मनुष्य। जहाँ तक राजनीति का मामला है, मैं समझता हूँ कि वो ऐसे ही शिष्ट हैं जैसे कोई भी उसकी राजनीतियाँ। और तब वो एक लड़की के साथ जाता है जो कि बहुत विख्यात है, और प्रेम हो जाता है और उनका विवाह हो जाता है। वे सारी दावतों में जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें, और वे सब एक साथ पीते हैं। अंत में वो उसके पास एक अच्छा घर हो जाता है, वो एक अच्छे पड़ोस में रहता है, वो लोगों में अच्छा समझा जाता है, परंतु वो दोनों पीते हैं। वो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, अपने बाल कटाती है, श्रृंगार करती है, हर चीज जैसे कि कामुक। वो सुंदर स्त्री है, अपने को दिखाती है, वो कभी भी गिरजे नहीं जाती, उनमें से कोई सा भी नहीं। उनके पड़ोस में से एक स्त्री बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट गिरजे से आती है, वो और उसका पति। अब ये महिला, चलिए हम इसे मेथोडिस्ट मान लें, क्योंकि मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट से पवित्रता पर थोड़ा अधिक जोर देते हैं, सिवाय न्यू टेस्टामेंट बैप्टिस्ट के, वे सब पवित्रता में विश्वास करते हैं, परंतु अधिकतर बैप्टिस्ट पवित्रता पर नहीं जाते। देखा, वे ऐसी चीजों का विश्वास नहीं करते, इसलिए हम इसे मेथोडिस्ट मान लें, क्योंकि वे पवित्रता में विश्वास करते हैं। और तब एक मेथोडिस्ट की महिला जो पड़ोस में रहती है इनके पास जाती है, एक ही गली में। उसका पति एक, चलिए हम उसे अकाउंटेंट या किसी दफ्तर में मान लेते हैं। ये मेथोडिस्ट महिला उस दूसरी महिला को देखती है। जब ये वकील नगर से बाहर जाता है, उसका नाम जॉन है, मान लिया उसका नाम जॉन है, अब उस पर अधिक विचार ना करें, अब हम काल्पनिक नाम ले रहे हैं, और उसका नाम जॉन है। वो रेल्फ के साथ जाया करती थी, और ये काल्पनिक नाम है, ये सारे के सारे, ताकि आप कहानी समझकर उसकी तस्वीर बना लें। पहली बात, आप जानते हैं, शराब की दावत में रेल्फ उसे फिर गले लगाती है। वो उत्तेजित हो जाती है क्योंकि वो फिर से रेल्फ के साथ प्रेम में है, वो सोचती है। तब कुछ देर पश्चात वो रेल्फ उससे मिलती है, और वो जॉन पर डाल देती है, उसकी आंखों पर डाल देती है, और वो सोचती है कि वो बहुत सुंदर, तेज और चालाक है, क्योंकि वो रेल्फ के साथ जा सकती है, और जॉन से उसका विवाह हुआ है। देखिए, स्त्री को यहाँ तक कि साधारण शिष्टाचार भी नहीं है, और वो इस विषय में कुछ नहीं सोचती, परंतु इस मेथोडिस्ट महिला का पालन पोषण दूसरे प्रकार के समाज में हुआ, और वो ये करती है कि गिरजे जाती है, और वो सोचती है कि ये एक भयानक स्त्री है, क्योंकि वो अपने पति से कहती है, जब वो अंदर आता है तो मैं देखती हूँ कि वो व्यक्ति अंदर जाकर उससे मिलता है, और जब जॉन मुकदमे के विषय में बाहर फिलाडेल्फिया या कहीं होता है तो वो उसे अपनी कार में ले जाता है और वे वहाँ समुद्र के किनारे लेटते हैं। मैं देखती हूँ जब वो घर आते हैं तो कभी कभी वे पर्दा भी नहीं खींचते और वह उसे चुम्बन करता, प्रेम करता है। ओ ये कितनी भयानक बात है, वो अपने पति से कहती है। क्यों, ये कुछ नहीं, बस एक आम वेश्या है। ये सच है कि ये आम वेश्या से भी बेकार है, क्योंकि ये विवाहित स्त्री है, समझे। और ये मेथोडिस्ट महिला सोचती है कि ये भयानक बात है कि वो कभी गिरजे नहीं जाती। अब ये मेथोडिस्ट महिला उसकी तरह हरकतें नहीं करती, नहीं, सच में नहीं, वो एक शिष्ट महिला है। और दूसरी चीज कि वो विस्की को जरा सा भी नहीं छुएगी, क्योंकि वे 90% अपने कार्यक्रम में विस्की के विरोध में विस्की कार्यक्रम चलाते हैं, इसलिए उनके पास विस्की रोको कार्यक्रम होते हैं। और वे मेथोडिस्ट गिरजे के लोग अपने गिरजे की शिक्षाओं से अधिक ऊपर नहीं जाते। परंतु यही स्त्री, ये मेथोडिस्ट महिला शाम को अपने पति के साथ संडे स्कूल के बाद छोटे छोटे कपड़े पहनकर रविवार की शाम को जाती है, अपने बाल कटाती है, लिपस्टिक लगाती है और थोड़ा सा धूम्रपान करती है। अब परमेश्वर के शब्दों में वे दोनों वेश्याएं हैं, परंतु ये वाली यहाँ नंगी, अभागी, तुच्छ, अंधी और नहीं जानती। दूसरी वैसे ही अपराधी है जैसे दूसरी, क्योंकि एक मनुष्य जो स्त्री को इच्छा से देखता है वो अपने साथ अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका। और यदि ये स्त्री यूं कहती है, भाई ब्रणम एक मिनट रुकिए, मैं आपको ये समझा देना चाहती हूँ कि मैं वेश्या नहीं हूँ, मेरी बहन हो सकता है, आप बाइबल लेकर उसके ऊपर अपने हाथ रखकर परमेश्वर की उपस्थिति में ये शपथ खाएं कि जहाँ तक हो सकता है मैं अपने पति के प्रति सच्ची हूँ। आपका शरीर पति से संबंधित है, परंतु आपका प्राण परमेश्वर से संबंधित है। दुष्ट आत्मा ने आपको अभिषेक कर रखा है। यदि ये है कि आप नहीं है तो आप हैं। मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि आप पूरी तरह से सही मानसिक दशा में नहीं है। आपकी दादी के लिए क्या होगा यदि वो उन छोटे छोटे कपड़ों को पहनकर सड़क पर चली जाए, वे उसे पागल खाने में डाल देंगे। वो अपनी बिना पोशाक के पहने आए, उसके मस्तिष्क में कुछ खराबी है। यदि ये तब ऐसा था तो ये अब ऐसा है। इस तरह से सारा संसार पागलपने में चला जाता है, कुल मिलाकर पागल है। और ये धीरे धीरे अंदर आता जाता है और लोग इसे नहीं जानते। अब क्या वो वेश्या है? अपने पति के द्वारा नहीं, अपने शरीर की प्रतिज्ञा से, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में उसके ऊपर दुष्ट वेश्या की आत्मा है जो कि उसे इस प्रकार की वेशभूषा पहनवाती है। और वो लोदेसियन कलीसियाई काल में है और नहीं जानती कि वो ये कर रही है। वो निर्दोष महिला नहीं जानती कि वेश्या होने के लिए परमेश्वर उसका न्याय करेगा। आप वही हैं, आप उसे ये बताएं, आप उसे नहीं बता सकते। कोई विधि नहीं है कि आप उसे समझा दें। बाइबल कहती है कि वे नंगे हैं और ये नहीं जानते। यदि आप उसे व्यक्तिगत तौर पर वेश्या कहेंगे तो वो आपको गिरफ्तार करा देगी, वो करवा देगी। मैं किसी व्यक्तिगत के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाप के विषय में बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता वो अमुक गिरजा, वो फला फला, वो पादरी फला फला, वो नहीं नहीं, मैं कहता हूँ उसकी विचारधारा। देखिए, कुल मिलाकर मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहता, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये रीति जो वहाँ है, ये संसारिक रीति है। भाई जॉर्ज राइट यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि वे 75 या 78 वर्ष के हैं। क्या आप सोचेंगे यदि ऐसा हो कि आप बहन राइट से मिलने किसी दिन जाएं और वो वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहने खड़ी हो? क्यों, आपने तो कभी नहीं, आप उस महिला को ताले में बंद कर देंगे, आप उससे कभी विवाह नहीं करते। क्या यदि कोई नवयुवक उन दिनों में ऐसा करता, वही बात तब भी घटित होती। यदि ये चीज पाप और गलत थी तो ये तो एक बात है, परंतु लोग पागलपने में बंद गए हैं। इससे पहले कि ये घटित हो, मैं आपको पहले से थोड़ी सी भविष्यवाणी कर दूं। सारा संसार पागलपने में इकट्ठा हो रहा है और ये खराब और खराब और खराब होते जाएंगे जब तक कि ये पागलों का झुंड ना हो जाए। और अब ये लगभग उसी राह पर हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मनुष्य अपनी कार की बत्तियां बुझाकर सड़क पर गलत हाथ पर कार चलाएगा? एक मदमस्त नवयुवक जो हाई स्कूल से निकला हो, मान सकते हैं कि वो ढेर सारे लोगों को मार देगा, क्या वो उन्हें रोकता है? दूसरा वाला उसके पीछे पीछे आता है, वही काम करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक नवयुवक जो कभी भी अपने लिए सोचता है, अपने लिए कुछ भी, यहाँ से निकलकर और उस तरह का व्यवहार करे जो वे करते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक युवा स्त्री और स्त्रीत्व के पूरे उभार पर हो, सुंदर सुडौल संवरी हुई चेहरे से सुंदर हो और उसकी सुंदरता की यही चीजें दर्शाती हैं कि हम अंत समय में हैं। देखिए, वो पूरी तरह से सांसारिक लक्षण में है, सांसारिक चीजें, न कि पवित्रता की सुंदरता मिठास उसके प्राणों के अंदर है। मैंने स्त्रियां देखी हैं जो बाहर से देखने में कुछ भी नहीं दिखाई देती थीं। परंतु आप उनसे एक बार बात कीजिए, उनसे कुछ मिनटों तक बात कीजिए, वे वास्तव में असली कुछ हैं जिससे आप अलग नहीं हो सकते। देखिए, बाहरी सुंदरता शैतान की है, ये संसार की होती है। केन की संतानों को देखिए, वे कैसे इसमें गए। जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, उन्होंने उनको अपनी पत्नी कर लिया और परमेश्वर ने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। देखिए, वे इसराइली महिलाएं सख्त हाथों के साथ और बंधे बालों के साथ, जब वे परमेश्वर के पुत्र मुआब देश में आए और उन नाजुक स्त्रियों से मिले जिनके बाल अच्छी तरह सजे हुए और भड़कीले और उनके चेहरों पर की सफाई या जो भी आप इसे कहते हैं, और जब परमेश्वर के पुत्रों ने उन वास्तविक सुंदर स्त्रियों को देखा तो झूठे भविष्यवक्ता ने कहा, हम सब एक ही हैं, और उन्होंने उनसे विवाह किए और परमेश्वर ने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। वे जंगल में मारे गए, उनमें से प्रत्येक वहाँ बिना आशा के, बिना परमेश्वर के मर गए और सदा के लिए नष्ट हो गए, हमेशा के लिए निंदनीय ठहरे। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर की भलाई देखी थी, यद्यपि उन्होंने उस सोते से पिया था जो कभी सूखने का नहीं, उन्होंने मारी हुई चट्टान से पिया, उन्होंने पीतल के सांप से आश्चर्यकर्म होते देखे, वे सागर में मूसा के बपतिस्मे को लेकर आए, उन्होंने परमेश्वर की भुजा को देखा, उन्होंने सरदूतों का भोजन खाया और वो सारे काम किए, परंतु विवाह किया, उन स्त्रियों को अंदर आने दिया और उनसे आपस में विवाह किया। व्यभिचार नहीं किया बल्कि विवाह किया। परमेश्वर ने ये कभी क्षमा नहीं किया। ये दूसरी बार हुआ। अब हम यहाँ तीसरी बार हैं। अब पहले से अधिक धोखे से भरा हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये सख्त है और कई प्रकार से मुझे अक्सर आश्चर्य होता है, ये कैसे हो जाएगा, क्यों मुझे लोगों के साथ तर्क से बातें करनी पड़ती हैं, ये ऐसा क्यों होता है। और तब भी मैंने देखा है, यदि ये परमेश्वर की ओर से ना होता तो यहाँ कोई नहीं होता, एक भी महिला बैठकर यहाँ मुझे नहीं सुनती। परंतु वे वापस आते हैं क्योंकि कुछ है जिनके हृदय में सच्चाई का लंगर है, वे जानते हैं कि ये ठीक है, बिना किसी प्रश्न के वे जानते हैं कि ये ठीक है। अब देखिए क्या होता है। मैं जानता हूँ ये कठोर बात है, ये ऐसे ही है यदि कोई डॉक्टर आपको दवाई दे और आप उसे लेने से अस्वीकार कर दें, यदि आप मर जाएं तो डॉक्टर पर दोष ना लगाएं। और ये दवा के समान है। उन लोगों के विषय में क्या है जो सदा मुझ पर ये दावा करते हैं कि मैं स्त्रियों से घृणा करने वाला हूँ। आप देखिए, आप केवल स्त्री के कार्यकलापों पर ध्यान दीजिए और मैं आपको दिखा दूंगा कि कलीसिया कहाँ है। स्त्रियों की नैतिकता लौदीकिया में है, इस भौतिक संसार में है, नंगा, तुच्छ, अंधा, और ये नहीं जानता। वे लोग संसार की स्त्रियां और कलीसिया उसी स्थिति में है। शारीरिक का प्रतीक आत्मा में देखिए, हर बार उसमें होता हुआ। अब किसी दिन न्याय के कटघरे में, मैं जानता हूँ कि ये कहना सर्वमान्य नहीं है, और यदि मनुष्य ये कहने के लिए अभिषिक्त नहीं है तो अच्छा है आप ना कहें, क्योंकि आप नकल कर रहे हैं और तब आप परेशानी में फंस जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आप ध्यान दें, मुझे वास्तव में बहुत बार ऐसा लगता है कि एक स्त्री का खुला हुआ मुंह पकड़कर और उसके मुंह में दवा डाल दी और तब हाथ से उसका मुंह दबा लिया और वो हर बार इसे थूक देगी। क्या हो यदि डॉक्टर ने मरीज के साथ ऐसा किया और मरीज मर गया क्योंकि उसने दवा गटकने से मना कर दिया। उस न्याय के कटघरे में तब ये सारी चीजें, जैसे बाल काटना और छोटे छोटे कपड़े पहनना, और मैं केवल निर्माण कर रहा हूँ, समय बिल्कुल निकट है जब आप कुछ घटित होते हुए देखेंगे, जब कोई चीज घटित होने जा रही होगी, और ये सारी पृष्ठभूमि यहाँ केवल छोटे और जल्दी के संदेश से नींव रख रहा है जो कि सारे राष्ट्रों को हिला देगा। क्यों मैं स्त्रियों पर लेता हूँ? यहाँ पर किसी चीज के लिए कुछ ऐसा है जिससे कि आप सीधे उनके मस्तिष्क पर मार कर सकते हैं? ये भी बताने का यत्न कर रहा हूँ कि सही क्या है, और हाथ इस प्रकार से नीचे पकड़े हुए हूँ जैसे कि मुंह हो और वे इसे बाहर थूकते हैं। तब डॉक्टर पे कौन दोष लगाएगा? न्याय के दिन आप कैसे कहेंगे जबकि यही आवाजें इसके विरुद्ध चिल्लाई हैं, वो लोगों के सामने रिकॉर्ड पर सुना दी जाएंगी। तब वे इससे कैसे बचेंगे? आपकी उंगलियों के बीच में से थूक दिया, थोड़ा सा और डाला, तब अंत में सिर हिला दिया, पीने से मना, वापस और वापस जाओ, इससे काम नहीं चलेगा। अब भी आप वापस आ जाओ, मैं फिर से डाल दूंगा। तब किसको दोष दोगे? ना डॉक्टर को, ना दवा को, परंतु व्यक्ति के भाव मुद्रा को। ये बिल्कुल ठीक बात है। इन दिनों में एक भयानक दिन होगा जब ये पापी व्यभिचारी पीढ़ी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ी होगी। मैं देखता हूँ मेरे वर्ष बीत रहे हैं, मेरे कंधे झुक रहे हैं, और मैं जानता हूँ यहाँ मंच पर 33 वर्षों से यहाँ बाहर मैदान में, ये एक लंबा जीवन है। सेवकाई के ये 33 वर्ष, मुझे केवल एक ही दुख है कि मेरे पास इसके लिए 133 वर्ष नहीं है। मेरे पास ये अंतिम अवसर होगा जब इस मरणहार में सुसमाचार प्रचार करूं। परमेश्वर मेरी सहायता करे कि मैं जहां तक हो सके इस वचन के लिए सत्य पर ही अटल रहूं और वही कहूं जैसा उसने कहा। मेथोडिस्ट स्त्रियों को ऐसा किसने बनाया? आप कैसे ये उस तक ले जा पाएंगे? वो यहां लोजिसिया कलिसिया काल में है। अब हम पेंटिकॉस्टल स्त्रियों को लेंगे। उसे छोटे कपड़े और श्रृंगार या अपने बाल नहीं कटाने चाहिए, परंतु वो पीछे मुड़कर मेथोडिस्ट को देखती और कहती है, उस फला फला स्त्री को देखो। कहते हैं स्त्री छोटे कपड़े मत पहनो, परंतु वो कहती है और स्वयं के बाल कटे हुए हैं। समझे? परमेश्वर में जितने ऊंचे आप उठेंगे सारी चीजें उतनी ही पाप में दिखेंगी। और तब कभी कभी प्रार्थना में आप कल्पना कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा आपको उस क्षेत्र में उठा ले जाता है, तब सारी चीजें दुर्व्यवस्थित दिखाई देती हैं। तब जब आप नीचे वापस आते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप लोगों के लिए दुष्ट नीच हैं। आप कुछ नहीं हैं, परंतु एक पुराना व्यंग हैं। आप मूर्ख हैं क्योंकि आप एक पुरानी जड़ की तरह खड़े हैं और हमेशा लोगों को डांटते हैं। परंतु यदि आप कभी भी एक बार उस क्षेत्र में चढ़े जहां आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, भावनाओं के द्वारा नहीं, परंतु वास्तव में मूल पवित्र आत्मा के द्वारा उठाए गए हैं, सब मिलाकर लिखा है इच्छा बोध, प्रभु की महिमा सारे नामधारी गिरजों से बाहर जा चुकी है। ये ठीक बात है, वहां उनमें से कोई भी ठीक नहीं है। अब मैं आपको एक गोला खींच कर बताऊंगा। यदि मेरे पास श्याम पट होता, परंतु मैं चाहता हूं कि आप इधर ध्यान दें। मैं इस तरह एक गोला खींचने जा रहा हूं। मैं उसके अंदर एक और गोला बनाने जा रहा हूं। ये दो हैं। मैं इस गोले के अंदर एक और गोला खींचने जा रहा हूं। ये तीन गोले हैं, तीन वृत्त। अब ये आप हैं। ये परमेश्वर है। परमेश्वर त्रिएकता में एक है और बिना त्रिएकता के वो परमेश्वर नहीं है। वो किसी और प्रकार से प्रकट नहीं हो सकता और न ही आप बगैर त्रिएकता व्यक्ति होते हुए प्रकट हो सकते हो, जो कि आप हो, जो कि शरीर आत्मा प्राण है। इनमें से बिना एक के आप पूर्ण नहीं हैं। समझे? आपके पास प्राण नहीं है तो आप कुछ नहीं है। आपके पास आत्मा नहीं है, आप कुछ भी नहीं होंगे। आपके पास शरीर नहीं है तो आप केवल एक आत्मा है, शरीर नहीं। इसलिए परमेश्वर त्रिएकता में पूर्ण एक अस्तित्व है, ना कि त्रिएकता के अस्तित्वों में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही एक सच्चा प्रकट परमेश्वर है। परमेश्वर, यहाँ ध्यान दें, थोड़ा रुके। मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने इसे थोड़ी कुछ मिनटों देर पहले पढ़ा है, इसे सुनिए। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। परमेश्वर सृष्टि करता है और उसने ये कैसे रचा? परंतु ये परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ है। जब परमेश्वर आत्मा मनुष्य के रूप में रचा गया था, वो परमेश्वर के अस्तित्व की रचना थी। परमेश्वर सृष्टिकर्ता स्वयं सृष्टि बन गया। परमेश्वर जिसने मिट्टी को बनाया, कैल्शियम बनाया, पोटेशियम बनाया, अंतरिक्ष की ज्योति, पेट्रोल संबंधी सारी चीजों को एक साथ लिया और स्वयं को उसमें रच दिया। परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ, आमीन, अंतिम, आमीन का अर्थ ऐसा ही हो। परमेश्वर का अंतिम, जब परमेश्वर अपनी सृष्टि में पूर्ण हो गया। अब ये कैसे था? किसी मनुष्य ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, परंतु पिता के इकलौते ने उसे प्रकट किया। समझे आप? एक मिनट के, आप जल्दी में तो नहीं है? आइए एक मिनट के लिए कुल्सियों निकालें। मुझे ऐसा हुआ कि वचन मेरे मस्तिष्क में आया। आइए कुल्सियों निकालें, कुल्सियों की पुस्तक और देखें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये पहला अध्याय है। मुझे इसे देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इस पर मैंने मना नहीं किया, इसलिए मैं देखूंगा। जैसा कि मैं जब युवा प्रचारक था किया करता था, मैं इन बातों को सोच सकता था बस अभी, परंतु जैसे बूढ़ा होता जा रहा हूँ मैं नहीं कर सकता। आइए हम नवे पद से आरंभ करें, मेरा विश्वास है। इस कारण क्या पौलुस कुलसियों को मसीह के विषय में बता रहा है कि वो कौन था? इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाओ और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में संभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यहाँ अब हम आ रहे हैं, ध्यान दें, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। मिला 15वां पद, कुलसियों 1:5, और सारी सृष्टि में पहलौटा। आमीन। क्या? सारी सृष्टि में पहलौटा, चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे कोई क्यों ना हो, होने दो, वो सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। कोई भी चीज हो, वो हो सकती है, कोई दूसरा अस्तित्व नहीं। ध्यान दें, और उसमें, और वो इसलिए है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर हैं, चाहे वो पिता हो, पुत्र हो, पवित्र आत्मा, वो जो भी है, वो सब वस्तुओं में प्रथम है, स्वर्ग की सब वस्तुओं में पहला, पृथ्वी की, देखी अनदेखी या कोई भी चीज, ये परमेश्वर का पुत्र सब वस्तुओं में पहला था। ये ठीक है? मैं चिंता नहीं करता चाहे सिंहासन राज्य जो भी हो, स्वर्गीय सिंहासनों राज्यों, उस महान अलौकिक क्षेत्र के परे, उन अनंतताओं में जहाँ ये था, जो कुछ भी था, स्वर्गदूतों, ईश्वरों और जो कुछ भी था, वो सब वस्तुओं में प्रथम है। आमीन। क्या आप उसे देख नहीं सकते? वो सब वस्तुओं में प्रथम है और उसके द्वारा सृजी गई हैं। वो 17वां पद, और वो सब वस्तुओं में प्रथम है और उसमें सब वस्तुएं स्थिर हैं। कोई और चीज ये सब नहीं चला सकती, केवल वो, चाहे वो परमेश्वर पिता हो, परमेश्वर पवित्र आत्मा हो, चाहे वो स्वर्गदूत हो, प्रधानताएं, सामर्थ्य, राज्यों, जो कुछ भी है, सब वस्तुएं उसके द्वारा चलती हैं, सारी वस्तुएं उसमें स्थिर हैं। वो और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, वही जिला उठाता है जिसे वो छुड़ाने आया, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। ताकि प्रधान ठहरे। आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? वो जो सबके ऊपर है, वो सब वस्तुओं के ऊपर है जो कभी भी सृजी गई थी। प्रत्येक चरदूत, हर प्राणी, हर चीज जो है वो सब चीजों के ऊपर है। ये क्या प्राणी है? ये कौन हो सकता है? सब वस्तुओं के ऊपर है और शांति देता है। देखते हैं, एक मिनट, प्रधान, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सब वस्तुओं की परिपूर्णता, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, स्वर्गदूतों की सारी परिपूर्णता, समय की सारी परिपूर्णता, अनंतता की सारी परिपूर्णता, हर चीज उसमें वास करती है। ये वो व्यक्ति है और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। ये वो महान प्राणी है जिसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ। अब ये कलीसिया, उसका कुल उद्देश्य ये कलीसिया थी। अब हम कैसे इस कलीसिया में सम्मिलित हो सकते हैं? एक ही आत्मा द्वारा हम सबने एक ही देह में बपतिस्मा लिया। कलीसिया, मसीह की देह, ये असफल नहीं हो सकती। अब यहाँ क्या होता है? अब इस पर ध्यान दें, एक छोटी अलंकारिक तस्वीर है। अब ये बाहर वाला मनुष्य शरीर है, यहाँ हम दिखाई देते हैं जो हम देखते हैं, और इसमें शरीर के लिए 5 द्वार हैं। और कोई भी व्याकरण स्कूल का बालक जैसे कि मैं हूँ, ये जानता है कि शरीर की 5 इंद्रियां होती हैं जो शरीर को नियंत्रित करती हैं, देखना, चखना, स्पर्श, सूंघना और सुनना। इसके बिना आप शरीर को नहीं छू सकते। केवल यही विधि है कि आप शरीर हो, देखना, चखना, स्पर्श, सूंघना, सुनना। आप ये देखें, इसे चखें, स्पर्श करें। अब ये बुरे वाले हैं बाहर की ओर, अब इसके अंदर आत्मा है। जब आप पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और जीवन का श्वास उसमें डाला तो आप ये हो गए। इस आत्मा का स्वभाव संसारिक है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं मिली, परंतु परमेश्वर से अनुमति मिली है, दी गई है। अब आप समझे, क्योंकि हर एक बालक जो संसार में उत्पन्न हुआ, वो पाप में उत्पन्न हुआ, अपराध में ढला, संसार में झूठ बोलता हुआ आया। क्या ये ठीक है? इसलिए ये व्यक्ति अंदर से आरंभ से ही पापी है। अब इसमें अंदर जाने के 5 द्वार हैं। अब ये 5 द्वार, मैं नहीं जानता कि मैं इन्हें अभी सही याद कर पाऊंगा। जब पहला मैं जानता हूँ, विचार है, विवेक और प्रेम, चुनाव नहीं, विवेक, प्रेम, तर्क करना, आत्मा के 5 अंदर जाने के मार्ग हैं। आप अपने शरीर से नहीं सोच सकते, आपको अपनी आत्मा से सोचना पड़ता है। आपके शरीर में विवेक नहीं है, ये मस्तिष्क की शक्ति बिल्कुल नहीं है, आपके शरीर की भी नहीं है, इसलिए आपको अपनी आत्मा से सोचना पड़ता है, आपको तर्क करना पड़ता है। आप अपने भौतिक जीव से तर्क नहीं कर सकते। क्यों? तर्क ना देखता है, ना चखता है, ना अनुभव करता है, ना सूंघता या सुनता है। तर्क आप अपने मस्तिष्क में कर सकते हैं। यदि आप निद्रा में हैं या बाहर हैं, तो आपका शरीर वहाँ मृत पड़ा है, परंतु आपका आत्मा अभी ये तर्क कर सकता है। 5 इंद्रियां हैं जो भीतरी मनुष्य को नियंत्रित करती हैं। और वो अब अंतिम मनुष्य का, जो कि प्राण है, वहाँ केवल एक इंद्री है जो उसे नियंत्रित करती है, और वो स्वतंत्र नैतिक कार्यालय की है, स्वतंत्र इच्छा है चुनने की या अस्वीकार करने की। और अब कारण ये है कि आज लोग, अब इसे ना भूलें, और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या, पवित्र आत्मा का प्रारंभिक प्रमाण क्या है, समझे? अब लोग इस आत्मा में रह सकते हैं और वे आत्मा में नाचते हैं, वे आत्मा में चिल्लाते हैं, वे आत्मा में गिरजे जाते हैं। उनके ऊपर वास्तविक परमेश्वर की आत्मा का मूल अभिषेक उस आत्मा पर हो सकता है, परंतु फिर भी वे नष्ट हैं, जैसे कि शैतान से जकड़े हुए जितने हो सकते हैं उस आत्मा से। क्योंकि ध्यान दें, यही कारण है कि आप उस स्त्री को नहीं बता सकते हैं कि वो जो छोटे छोटे कपड़े पहने थी गलत था। आप उसे नहीं बता सकते हैं कि बाल कटाना गलत है। ठीक है, इससे आपके बालों का क्या लेना देना? ठीक है, इससे समसून का था, समझे? जो कोई भी इसमें से एक शब्द बढ़ाएगा या इसमें से एक शब्द निकालेगा तो आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए, यदि मैं बैप्टिस्ट मनुष्य होता और आप आते और मुझे बताते कि मुझे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए, ये बाइबल में है, अच्छा तो पहली बात आप जानते हैं कि मैं कहता, मैं अपने पादरी से पूछूंगा, और मैं पादरी के पास जाता, वो कहता, ओ ऐसा तो कुछ बहुत पहले था, देखा, हाँ देखा, हम बैप्टिस्ट, हम जो विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमें उपनामों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा में डूबना चाहिए। सारे गिरजों ने इसी तरह से किया, जब से जॉन स्मिथ ने इसे स्थापित किया है ये इसी तरह से ही हुआ है। ठीक है, यही आपका अंतिम है, नरक में जाओ, जो वो व्यक्ति कहता है। क्या है यदि आप मेथोडिस्ट हैं और छिड़काव आपकी रीति है और आपको बताया गया है कि आपको डूबना चाहिए? देखा मेरा क्या अर्थ है, आप मेथोडिस्ट के पादरी के पास वापस जाएं और बिशप को लिखकर पूछेंगे इस बारे में, ऐसा ऐसा कहा गया है, ऐसा ऐसा इस विषय पर कहा गया है। परंतु हम मेथोडिस्ट कलीसिया, हमारी स्थापना 300 या 400 वर्ष पहले इंग्लैंड में हुई, जॉन वेस्ली और व्हाइट फील्ड के द्वारा, और उनमें से और भी हैं, और एसबरी, हमने ये प्रमाण प्रलेख स्थापित किया, जॉन वेस्ली का अनुसरण कर रहे हैं कि हमारा तो छिड़काव ही होना है, क्योंकि ये तो बस बाहरी तरीका है, और हम सोचते हैं कि छिड़काव भी उतना ही अच्छा है जैसे कि और तरीके। यदि आप वास्तविक हैं, यदि मेथोडिस्ट गिरजा ही आपका अंतिम है, तो ये उतना ही दूर है जितना आप जा सकते हैं। यदि आप कैथोलिक हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइबल में नहीं है कि शुक्रवार को मांस नहीं खाना है और वो सब इस प्रकार की बातें, और ये पवित्र यूक्रिस्ट आत्मा पतरा बिस्कुट नहीं है क्योंकि ये आत्मा है, और आदि आदि, और आप पादरी के पास जाते हैं, पादरी कहता है कि ये हमारे प्रमाण प्रलेख में लिखा हुआ है। और यदि गिरजा आपका अंतिम है और भूख करके नहीं चिल्लाते और कोई क्या कहता है, वो आपका अंतिम है, वो परमेश्वर सहायता कर कि ये इनकी समझ में अंदर बैठ जाए। मेरे लिए सारी चीजें गलत हैं। परमेश्वर का वचन ही अंतिम है, वचन जो कुछ भी कहता है तो वो ठीक है। अब यहाँ इस क्षेत्र में केवल एक ही मार्ग है कि जब कभी तक आप इस छोटे मानव देह के अंदर हैं, और आपको पहले से चुना हुआ होना चाहिए क्योंकि आप परमेश्वर के साथ थे, आप परमेश्वर का भाग हैं। मैं अपने पिता में था, मैं अपने दादा में भी था, और मेरे दादा के दादा में भी, बीज के द्वारा मैं उसमें था, और मैं मसीह में था। आप मसीह में जगत की उत्पत्ति से पहले थे। वो अपनों को बचाने आया, उसके अपने जो उसमें थे, हालेलुया, उसके बालक जो उसमें थे। कभी भी शैतान के बच्चों को बचाने नहीं आया, वे इसे कभी नहीं जान पाएंगे, और वे अपनी बुद्धि के ज्ञान में इतने चतुर हैं कि आप उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकते, आप उनसे बढ़कर बात नहीं कर सकते, परंतु आप विश्वास से इसे देखते हैं। विज्ञान को विश्वास की आवश्यकता नहीं, जो भी वे बात करते हैं विज्ञान उसे सिद्ध करता है, इसमें विश्वास की आवश्यकता नहीं है। कैथोलिक पादरी आपको बता देगा, देखो कैथोलिक कलीसिया कितने पुराने समय से चली आ रही है, देखो वो पागान के यात्राओं में कितने समय तक स्थिर रही। मेथोडिस्ट कलीसिया कहती है, देखो ये कितने समय से है, मैंने एक गिरजा देखा जो ढोंगियों के चिन्ह पर बात करता है, कल रास्ते पर आते हुए मैंने देखा, कहा कि मसीह की कलीसिया ईसा पश्चात सन 33 में स्थापित हुई, ये अभी 100 वर्ष पुरानी नहीं है, देखा नामधारी गिरजा। चेलों की विचारधारा शायद ही कुछ समझ में आया, वे आज के सदूकी हैं, कोई आत्मा नहीं, नहीं, और आप उन्हें नहीं बता सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप उनसे तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हम तर्क वितर्क से कहीं और आगे निकल जाते हैं। अपनी समझ का सहारा ना लेना, विश्वास कभी तर्क नहीं करता, विश्वास उसका भरोसा करता है। वे कहते हैं, अब देखिए, क्या आप विश्वास करते हैं कि हमें वे सारी पिछली बातें करनी पड़ेंगी, ये ना समझिए, परंतु बाइबल ऐसा कहती है। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता कि ये कैसे होता है, परंतु ये होता है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, इसलिए आपको नहीं चाहिए कि मैं आपको इस विषय में नहीं बता सकता। विश्वास इसकी व्याख्या नहीं करता, क्या ये आपको मालूम है, विश्वास केवल इसका विश्वास करता है। यीशु ने निकोदिमस से कहा, उसके दिनों की एक्यूमेनिकल काउंसिल उसके पास रात को आया और कहा, रब्बी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई मनुष्य उन कामों को जो तू करता है नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। कहा, मैं एक बूढ़ा मनुष्य हूँ, फिर से जन्म लेने के लिए अपनी माँ के घर में प्रवेश करूँ? उसने कहा, अब मैं तुझे स्वर्गीय बातें कैसे बताऊँ जबकि तू संसारिक बातों का विश्वास नहीं करता, समझे? तब फिर उसने एक दिन कहा, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तो तुम में जीवन नहीं। उसने इसे खोल कर नहीं बताया। वे चेले और वे जो उन दिनों में जीवन के लिए ठहराए गए थे, जो कि ये जानते थे, कहा, वो सब जो पिता ने मुझे दिया है वही आएगा। केवल एक काम आपको करना है कि मेरी आवाज को पहचानना है। वे इसे जानते हैं क्योंकि मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। और आवाज प्रकट किया हुआ शब्द है। जो भी है वे इसका विश्वास करते हैं। उन्हें वैज्ञानिक रीति से किसी चीज को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, या किसी सदूकी या फरीसी या कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। मैंने ये कहा, वे इसका विश्वास करते हैं क्योंकि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। और शब्दों के रूप में ये परमेश्वर की आवाज है, क्योंकि ये यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन है। पुराना और नया नियम एक साथ मिल जाते हैं। आमीन। आप यही हैं। क्यों? आप कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। किसने उन्हें ऐसा बनाया? क्योंकि एक चीज उनका लंगर या गढ़ कलीसिया पर है। और यहाँ पर एक सप्ताह पहले, पहले रविवार को आपको याद है, आप में से कितने यहाँ थे और उन्होंने वो धर्म उपदेश सुना, अंतिम दिनों के अभिषेक? मैं सोचता हूँ कि आप सब ने सुना। देखिए, वे अभिषिक्त हैं, उनकी आत्माएं अभिषिक्त हुई इस दूसरे क्षेत्र में। अब वो पहली स्त्री कहती है, नहीं, वो इस बात पर जोर से नहीं बोलती कि कलीसिया क्या कहती है, किसी ने क्या कहा। वो बहुत तेज है, उसके पास कॉलेज की शिक्षा है, वो अपने पति के ऊपर डाल सकती है और सोचती है ऐसा करके वो बुद्धिमान हो गई। ये दूसरी स्त्री नंगी अंधी है और ये नहीं जानती। ओ, ये कितना दयनीय है, परंतु बाइबल हमें ऐसा ही चित्र बनाकर दिखाती है। वो गिरजे जाती है, वो स्त्री हो सकता है इससे अधिक अच्छी होगी, वो अच्छा स्वच्छ जीवन जीती है, इसके विरोध में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर इसका न्यायी होगा, मैं नहीं जानता, मैं न्यायी नहीं हूँ, मैं केवल इस बात के लिए उत्तरदायी हूँ जो वो मुझे दिखाता है। यही चेलों ने कहा, हम वही बोलते हैं जो हम जानते हैं, जो हमने सुना है, जो हमने देखा। मैं भी इसी बात का उत्तरदायी हूँ, इसी बात के आप उत्तरदायी हैं। परंतु आप देखें, यदि आप उसी एक स्त्री को लें, वो कहाँ पर आकर बंद गई? देखिए, वो चारों ओर घूमी, उसने सुना, कोई संदेह नहीं, बहुत बार रेडियो चलाया, परमेश्वर की आवाज बहुत बार बोल रही थी। अब देखिए, वो धार्मिक मत के इस नतीजे पर पहुंची, एक गोत्र, सारे गिरजे गोत्र या वंश हैं, हर चीज, ये बिल्कुल ठीक बात है। वे केवल एक रहने के स्थान है जहाँ पर लोग सदस्य की तरह इकट्ठे होते हैं, और वो यहाँ आती है क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अब यदि आप उसे बताने जाएंगे कि उसे क्या करना है, वो आपकी बात नहीं सुनेगी। आप उसे ये बाइबल में दिखाएं, वो इसे नहीं सुनेगी। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, बंद करने से पहले एक दो टिप्पणियाँ और। अभी पौना है, 15 मिनट और हैं बाहर निकलने के समय में। अब देखिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वो स्त्री इसे क्यों नहीं देख सकती? क्यों नहीं देख सकती? जहाँ तक कि वो शारीरिक व्यभिचार है, अपने पति के संग वो दोषी नहीं, उसे कोई अपराध स्वीकार नहीं करना, वो ऐसे ही शुद्ध है जैसे वो अपने जन्म के दिन थी, किसी व्यक्ति ने उसे नहीं छुआ। अब मैं समानांतर बोल रहा हूँ स्त्री और कलीसिया के लिए, वो ऐसे ही शुद्ध है जैसी वो जन्मी थी, ठीक ऐसे ही बिल्कुल कलीसिया है, जैसी वो जन्मी थी, परंतु वो पाप में जन्मी, अपराधों में बढ़ी पली। देखा मेरा क्या अर्थ है? अब आप उसे बताएं कि उसका बाल कटाना गलत है, बाइबल ऐसा कहती है, उसके लिए छोटे कपड़े पहनना गलत है, बाइबल ऐसा कहती है, वो कहेगी ना समझी की बात। क्यों? उसका अंतिम यहाँ तीसरे मनुष्य में नहीं है, वो प्राण जो पहले से ठहराया गया और परमेश्वर की ओर से भेजा गया, परंतु उसका अंतिम एक संगठन है यहाँ, जो कि किसी मनुष्य ने इसके बाहर संगठित किया है, समझे? परंतु यदि परमेश्वर का वचन उसके प्राण के अंदर है तो वो आमीन कहता है। मैं ये देखता हूँ, ये इससे मिलता है। अब इधर देखिए, वो मनुष्य जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, देखिए यहाँ बाहरी शरीर है, अब मैं मिली जुली सभा में बोल रहा हूँ, परंतु मैं आपके पास्टर के समान, आपके भाई के समान बोल रहा हूँ। यहाँ ये शरीर है, ये निर्बल है, ये उसके बंधन में है। एक छोटी स्त्री सड़क पे जाती है, कोई नवयुवक अपनी युवावस्था में जब वो 17, 18, 20, 25, 30 वर्ष में वहाँ से निकलता है और ये युवा स्त्री अपने शरीर को हर प्रकार से मटकाते हुए ऊंची एड़ी की जूती पहनकर सामने से और पीछे से उभरी हुई और वेशभूषा घुटनों से ऊंची या छोटे कपड़े पहने हुए, क्या आप जानते हैं कि बाइबल ने कहा कि वो ऐसे ही करेगी? क्या आप जानते हैं कि बाइबल ने कहा कि वो इसी प्रकार करेगी? वो कितनी गंदी होगी? क्या आपने इस माह की रीडर डाइजेस्ट पढ़ी? आज के ये पुरुष और स्त्रियां, छोटी लड़की 20 या 25 वर्ष की आयु में स्त्री धर्म बंद हो गया। विज्ञान के अनुसार वो जीवन के बदलाव जो जीवन के अधेड़ अवस्था में आते हैं 20 से 25 वर्ष के बीच में आ रहे हैं। ये मेरे समय में 30-35 वर्ष की आयु में आते थे। मेरी माँ की आयु में एक स्त्री का ऋतुस्राव जब तक वो 40 या 45 की ना हो जाए बंद नहीं होता था। ये क्या है? ये विज्ञान और भोजन के मिलावट के कारण है जिससे सारी मानव देह भ्रष्ट हो गई है, जब तक कि हम दूषित जन समूह ना बन गए। ठीक है, जब भौतिक जीव ही भ्रष्ट है तो क्या वो मस्तिष्क की कोशिकाएं भौतिक जीव में नहीं है? अब आत्मा पर ध्यान दीजिए जो इसका अनुसरण कर रही है। प्रभु के नाम में एक ऐसा समय आएगा कि लोग पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। बाइबल ऐसा ही कहती है, वे चीखेंगे और परेशान होंगे, बड़ी डरावनी चीजें उनके काल्पनिक मस्तिष्क में आएंगी। रेडियो और वो चीजें, हमारे टेलीविजन कार्यक्रम उन्हें तैयार कर रहे हैं। तब ऐसी चीजें होंगी जैसे कि एक चींटी पृथ्वी पर बढ़कर वो 14 पेड़ों की ऊंचाई तक हो जाएगी। तब पृथ्वी पर से एक चिड़िया उड़कर निकलेगी जिसके पंख 4-5 मील के होंगे और लोग उन्हें देखेंगे और चिल्लाएंगे और घबरा जाएंगे और अनुग्रह के लिए रोएंगे, परंतु वो पीड़ाएं होंगी। जब तक मैं उन पीड़ाओं के आने का प्रचार करूं, आप रुकिए। मूसा पर ध्यान दीजिए जो उसने भौतिक जीवन में किया, आत्मा में नहीं। जब उसने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, बाहर उसका भविष्यद्वक्ता होने के लिए निकल जा, मुट्ठी भर दूल उठा और हवा में फेंक और ये कहे, यहोवा यूं कहता है, कुटकियां पृथ्वी पर आ जाएंगी। वहाँ कोई कुटकी ना थी। पहली चीज आप जानते हैं, उन्होंने देखना आरंभ किया कि कुछ झाड़ी पर रेंग रहा है, वहाँ देखो वहाँ कुछ और है, और कुछ देर बाद वो इतनी गहरी थी कि आप उसमें से चलकर नहीं जा सकते थे। वे कहाँ से आई? परमेश्वर सृजनहार है, वो जो चाहे कर सकता है, वो श्रेष्ठ है। वो ऐसी चिड़िया बना सकता है जो अपने पंखों को पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैलाएगी। उसने कहा, कुटकियां आ जाएं और सारी पृथ्वी को ढांक लें। वहाँ देश में डांस नहीं थी। पहली बात आप जानते हैं कि पुरानी डांसें उड़ना आरंभ हो गई। पहली चीज वहाँ 8 या 10-12 थी। पहली चीज आप जानते हैं, आप उनमें से नहीं जा सकते। परमेश्वर सृष्टिकर्ता अपने वचन को बनाए रखता है और उसने परमेश्वर की आज्ञा पर अपनी लाठी आगे बढ़ाई और कहा, मेंढक आ जाए और पृथ्वी को ढांक लें। और मेंढक आने लगे जब तक कि ढेर नहीं लग गया और चारों ओर बदबू फैल गई। हो सकता है 40 या 50 फीट ऊंचे मेंढकों के ढेर। वे फ्राउन की अलमारी में थे, वे चादर की तह में थे और वहाँ 500 मेंढक पलंग की चादर के नीचे थे, पलंग के नीचे छोटी मोटी जगहों में, जहाँ कहीं भी वे गए मेंढक ही मेंढक थे। ये कहाँ से आए? परमेश्वर सृष्टिकर्ता सर्वोच्च है, जो वो करता है वो वही करेगा। और उसने कहा, पृथ्वी पर भयानक दृश्य होंगे, टिड्डियों के स्त्रियों जैसे लंबे लंबे बाल होंगे, वो उन स्त्रियों पर आएंगी जिन्होंने अपने बाल काट रखे हैं। उनके सिंह जैसे दांत, उनकी पूंछ में बिच्छू जैसे डंक, वे महीनों मनुष्यों को कष्ट देंगी। जब तक हम इन महामारियों और मोहरों और इन 7 गर्जनों को न खोलें, तब तक प्रतीक्षा कीजिए, देखिए क्या घटित होता है। ओ भाइयों, अच्छा है कि आप गोशेन में पहुंच जाएं, जब तक समय है गोशेन में पहुंच जाएं। इस बाहरी दिखावे पर कोई ध्यान न दें। यहाँ देखिए, ये छोटी स्त्री सड़क पर मटकती हुई जा रही है। यहाँ एक युवा व्यक्ति की दृष्टि इस पर पड़ती है। वो गिरजे का सदस्य है, वो पेंटिकॉस्टल है, वो जो कुछ भी है वही है, परंतु पहली बात यह है कि वहाँ ठहराव का कोई स्थान नहीं है। वो कहती है अरे उसके घुंघराले बाल हैं, दिखने में अच्छा है, सीधे कंधे हैं, युवा पुरुष हो सकता है कि अच्छा जीवन जीने का यत्न किया। वो उसकी ओर बढ़ती है, यहाँ तक कि प्रचार की तरफ भी। पहली चीज आप जानते हैं कि ये क्या है, यहाँ बाहर की ओर शरीर की इच्छा है और आत्मा यहाँ अंदर है। यद्यपि अभिषेक हुआ है, कह रहा है ये मत करो, परंतु ये क्या करेगा, वो चारों ओर चक्कर मारेगा, वहाँ पकड़ है और वो वहाँ जाता है। पहली बात आप जानते हैं, वो उसके साथ दिन तय करना चाह रहा है, वो व्यभिचार करने का दोषी है, चाहे वे उसे छुए या न छुए, परंतु वास्तव में नया जन्म पाया हुआ परमेश्वर का पुत्र। आमीन। आप अपने से ये नहीं कर सकते। ये लाल खून वाले नर के लिए नितांत असंभव है कि वो नारी के सामने इस प्रकार चले कि उसके अंदर कुछ भी ना हो, परंतु जब उसके अंदर कुछ होता है, उस नया जन्म प्राप्त किए हुए के यहाँ कुछ है। यद्यपि हो सकता है वो मनुष्य चिल्लाया हो, अन्य भाषाओं में बोला हो, उछला हो, नृत्य किया हो, सब कुछ किया हो, पवित्र आत्मा से अभिषेक हो, सारे चिन्ह और आश्चर्य कर्म किए हो जो कि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा में कहे हो। यीशु ने कहा उस दिन बहुत तेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे प्रभु क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या मैंने आपके नाम से शैतान को नहीं निकाला, क्या मैंने नहीं। उसने कहा मेरे पास से चले जाओ अधर्म करने वालों। अधर्म क्या है? कुछ ऐसा जो आप जानते हैं कि करना चाहिए और नहीं करते। मुझसे दूर हो जाओ तुम अधर्म के कार्य करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। परंतु उस मनुष्य के अंदर यदि वो लंगर या ठहराव है जो कि परमेश्वर का वचन है, जो कि जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया गया है, मैं चिंता नहीं करता जो भी हो, वो उसे थामे रहता है, वो वहीं टिका रहता है। यही कारण है कि वो स्त्री उन छोटे कपड़ों को पहनेगी। वो वैश्या गिनी जाती है वैसे ही जैसे वो स्त्री उस कार्य में लिप्त हो, समझे। वो उस आत्मा को नहीं जानती। वो कैसे जान सकती है अपने अंतिम को? अंतिम क्या है? अंतिम वचन है, अंतिम आमीन है। ये सारे विवाद का अंत है आपका अंतिम। और यदि आपकी कलीसिया एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो आपको ये बताती है कि लंबे बाल और ये बातें केवल पागलपन है, आपके सिर के पीछे एक फालतू पहिया है और आदि आदि इस प्रकार की बातें, वो व्यक्ति शैतान से जकड़ा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा है स्त्री के लिए बाल कटाना लज्जा की बात है, वो अपने सिर का अपमान करती है। यदि वो अपने पति का अपमान करती है और उसका पति कलीसिया है और कलीसिया मसीह है, वो अपमान योग्य धार्मिक वेश्या है, नंगी है और नहीं जानती। नंगी? क्या बाइबल ने नहीं कहा कि स्त्री की ओढ़नी उसके बाल है? क्या बाल उसको ओढ़ने के लिए नहीं दिए गए? किसी दिन सामने न्याय के कटघरे में मैंने दवाई डालने का यत्न किया और अपने हाथों से पकड़ा रहा और आपने अपनी उंगलियों के बीच में से थूक दिया। परमेश्वर एक दिन उनका न्याय करेगा, यहोवा यूं कहता है। ये मूर्खों का झुंड नहीं है या कोई बूढ़ा व्यक्ति पूरा पागल हो गया, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। और एक वास्तविक मूल मसीह अंदर वाले व्यक्ति से संभलेगा, वो आत्मा वहाँ प्रारंभ से है जो कि वचन है। जैसा कि वो आप सबकी परिपूर्णता था, आप उसमें वहाँ कैलवरी पर थे, उसने आपको पहले से जाना कि आप यहाँ होंगे, उसने केवल घोषित किया कि क्या घटित होगा। आप उसमें थे, आप उसके साथ मरे, आप अपने घमंड के लिए मर गए, अपने फैशन के लिए मर गए, संसार के लिए मर गए। जब आप उसके साथ कलवरी पे मर गए और आप उसके साथ जी उठे, जब वो तीसरे दिन फिर से जी उठा, और क्योंकि आपने ये स्वीकार किया, आप स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में उसके साथ बैठे हैं। हालेलुया, आप यहाँ हैं। ये अंदर वाला मनुष्य है, वो अंदर वाला वचन की हर बात को हाँ कहेगा, चाहे जो हो वचन के साथ बना रहेगा। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। बहुत वर्षों पहले मैंने ये सीखा, मेरी छोटी बेटी यहाँ पड़ी हुई मर रही है, मेरी पत्नी यहाँ पर शव गृह में सुरक्षित हुई है, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और शेरोन मर रही थी। मेरे जीवन में ऐसी कठोर परीक्षाएं कभी नहीं हुई। मैं लगभग 25 वर्ष का था, मैं वहाँ गया और बिली पॉल मरने पर था। डॉक्टर सैम आए और कहा बिली ऐसा मत सोचो कि हम बिली को बचाने जा रहे हैं, और मैं उसने कहा वो बहुत बुरी हालत में है। कहा कि बिल मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर डाल दी। मैंने कहा डॉक्टर अब मुझ में ताकत नहीं है, कुछ घंटे मेरी बेटी शेरन को बुलाने के लिए हैं। मैं उसके पास वहाँ भागा उसको मांसपेशियों के संकुचन में देखने के लिए। वो नहीं रुकेगी। उन्होंने एक सुई उसकी रीढ़ की हड्डी में लगाई, उसमें छेद किया। मस्तिष्क की बीमारी का चिन्ह वहाँ से प्रकट हुआ। बस यही, मैं अपने मार्ग पर अस्पताल की ओर दौड़ा। अपना पुराना ट्रक वहाँ रोका, उससे उतरकर उस कमरे की ओर जाने के लिए चल पड़ा। इधर सैम बड़े कमरे में अपनी टोपी हाथ में लिए हुए रोते हुए आया, अपने हाथों में मुझे समेट लिया और कहा, बिल यहाँ वापस आओ। मैंने कहा, क्या बात है? कहा कि तुम उसे नहीं देख सकते। कहा, बिल वो मर रही है। और मैंने कहा, नहीं सैम, मेरी बच्ची नहीं। कहा, हाँ। कहा कि उसके लिए पूछो भी मत कि वो कभी जिएगी भी। कहा कि वो अपाहिज रहेगी। कहा कि वो सदा पिछड़ी रहेगी और अपने जीवन भर अपाहिज रहेगी। कहा कि उसे मस्तिष्क ज्वर है। कहा कि उसके पास मत जाओ, ऐसा करने से तुम बिली को मार डालोगे। मैंने कहा, मुझे उसे देखना है। कहा कि बिल तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें मना किया है। अब तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे विषय में कितना सोचता हूँ। तुम मेरे अच्छे मित्र हो, सब कुछ हो। कहा कि मैं तुम्हारे विषय में कितना सोचता हूँ और कहा मैं तुम पर कितना विश्वास करता हूँ बिल। उसने कहा, परंतु उस बच्ची के पास बिल्कुल मत जाना। कहा यदि तुम ऐसा करते हो तो उसको मस्तिष्क ज्वर है, समझे। कहा कि कुछ मिनटों में वो चली जाएगी। कहा तुम हम उसे गाड़ देंगे। कहा कि बिली मुझे तुम्हारे लिए दुख है। उसने नर्स को बुलाया कि मुझे किसी दवा के लिए कहे। कहा कि मैं नहीं जानता कि ये मनुष्य कैसे खड़ा है। मैं वहाँ कुछ देर खड़ा रहा। वो अंदर दवा लाया, मैं हॉल में बैठ गया। उसने कहा बैठो और नर्स वो लेकर आई। कहा कि भाई ब्रणम इसे पी लो। मैंने कहा धन्यवाद। वहाँ कुछ मिनटों तक बैठा रहा। जब वो इस तरह से गई, मैंने उसे थूकदान में उलट दिया और गिलास वापस रख दिया। वहाँ बैठे हुए मैंने सोचा, ओ परमेश्वर मैंने क्या किया है। आप अच्छे परमेश्वर हैं, आपने क्यों उसे मरने दिया। उस दिन मैं उसके दो छोटे छोटे हाथों को पकड़े हुए इस तरह उस बच्ची के लिए याचना कर रहा था, आप क्यों उसे जाने दे रहे हैं। वहाँ बिली लेटा हुआ मर रहा है और यहाँ ये मर रही है। मैंने क्या किया, मुझे बता। ठीक है, यदि मैं उसके साथ जा सकता हूँ। मैंने दरवाजा खोला और वहाँ कोई नर्स ना थी। मैं तहखाने में चला गया। ये जबकि बात है जब अस्पताल तैयार नहीं हुआ था। पर्दे शायद ही खिड़कियों पर पर्दे रहे होंगे और मक्खियाँ उसकी छोटी आंखों पर थीं। एक मच्छरदानी का टुकड़ा था, हम उसे जाली कहते हैं, उसके मुंह पर पड़ा हुआ था। मैंने मक्खियों को भगाया जो वहाँ थीं। उसकी छोटी छोटी आंखें वो इतनी अधिक पीड़ित थीं कि वो भेंगी हो गई थीं। तब वहाँ शैतान मेरे पास को आया और कहा, क्या तुमने कहा कि वो एक अच्छा परमेश्वर है। मैंने कहा, हाँ मैंने ये कहा। क्या तुमने कहा कि वो चंगा करने वाला है, तो तुम्हारे पिता वहाँ तुम्हारे हाथों में क्यों मर गए और तुम उसे पापी कह रहे थे और उसके जीवन के लिए पुकार रहे थे। क्यों तुम्हारा भाई दूसरे भाई के हाथों में मर गया और तुम प्रचार मंच पर खड़े हुए कुछ सप्ताह पहले प्रचार कर रहे थे। कहा कि फिर उसने क्यों नहीं तुम्हें उत्तर दिया। तुमने कहा वो तुमसे प्रेम करता है, तुम्हें बचाया है। वो मुझे ये नहीं समझा सका कि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मैं उसे पहले ही देख चुका था। परंतु वो मुझे बता रहा था कि वो मेरी चिंता नहीं करता। कहा कि वहाँ तुम्हारी पत्नी पड़ी है, तुम्हारे बच्चे भी यहाँ जल्दी होंगे। तुम्हारे पिता गाड़े गए, तुम्हारा भाई गाड़ा गया, अब कल तुम्हारी पत्नी गाड़ी जाएगी और यहाँ तुम्हारा दूसरा बालक मर रहा है। वो भला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला है। कहा तुमने अपने में से ही रस निकाला है। इससे क्या हुआ, ये बाहर की ओर से कार्य कर रहा था इस पहले मनुष्य से। कहा देखो अब तुम जानते हो कि जब तुमने कुछ वर्षों पहले, लगभग दो तीन वर्ष पहले, इससे पहले जब तुमने ये ग्रहण किया, लोगों में अच्छे समझे जाते थे। तुमने अच्छा स्वच्छ जीवन जिया। नगर की कोई भी लड़की बाहर जाना चाहती थी वो तुम्हारे साथ जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने स्वच्छ और शिष्ट अनुभव किया। मैं उनमें से किसी के भी सामने खड़ा हो सकता हूँ। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, कभी भी कुछ नहीं कहा। यद्यपि उन्होंने तेज बनने की कोशिश की, मैंने उसे घर पहुँचा दिया। और तुम लोगों के बीच में पसंद किए जाते थे, परंतु अब तुम क्या हो, एक कट्टर धर्मी। ये ठीक है, मैं था। देखिए सब बातें आपस में मिलकर बढ़ने लगी। बाहर का तर्क वितर्क आत्मा में इन सब बातों को मिलाने लगा। शैतान ये ठीक है। और क्या तुमने कहा कि वो चंगा करने वाला है। हाँ हाँ। और तुम मांग रहे हो, रो रहे हो, और लोग तुम्हें बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं था, कि तुम तो अब अपनी लीग से हट रहे हो। तुम्हारे अपने गिरजे ने तुम्हें इसके लिए बाहर निकाल दिया। तुम्हारा अपना बैप्टिस्ट गिरजा जो वहाँ था, इसी कारण तुम्हें दरवाजे से बाहर कर दिया। हाँ, तुम्हारे पिताजी गाड़े गए, तुम्हारा भाई गाड़ा गया, तुम्हारी पत्नी वहाँ पड़ी है गाड़ने के लिए, वहाँ तुम्हारा बालक है, 15 मिनट के बाद वो भी चला जाएगा और वो चंगा करने वाला है। तुम्हारा अपना मांस और लहू उसकी ओर से एक ही शब्द बच्चे के जीवन को बचा लेगा। तुमने कहा कि वो चंगा करने वाला है। लोग तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रचारकों ने तुम्हें बताया कि तुमने सब गड़बड़ कर लिया है, तुम पागल हो गए हो, तुम कट्टर धर्मी हो गए हो, और तुमने कहा कि उसने तुमसे प्रेम किया है। क्या वो तुमसे प्रेम कर सकता है? और तुम अपने पिता के लिए कैसे रोए? कैसे तुमने एक रात्रि के बाद दूसरी रात्रि उपवास रखा, और जब तुम दिन के समय तुम्हें प्रार्थना करनी होती थी, काम करने के लिए खंभे पे चढ़ना होता था, और जब उसने उसे तुम्हारी बाहों में एक पापी की तरह मरने दिया? कैसे तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी महिला थी वो, और तुमने उससे कितना प्रेम किया? बिली की माँ, आप में से बहुत सो को होप की याद है, वो कितनी अच्छी लड़की थी, तुम कितने प्रसन्न थे। तुम्हारा छोटा सा घर वहाँ था जिसमें लगभग $7 या $8 कीमत की लकड़ी का सामान था। तुम्हारे पास लकड़ी का क्या सामान था, परंतु तब भी तुमने उससे प्रेम किया, और तुम एक दूसरे से प्रेम करते थे, और तुमने जाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करी, और कुछ मस्तिष्क की भावना के आवेग में खड़े हुए और चले गए और कहा कि वे ठीक हो गए। परंतु अब तुम्हारी अपनी पत्नी वो वहाँ मृत है। अब दूसरे दिन वो सामने अंत्येष्टि करने वाले प्रतिष्ठान स्कॉट एंड कॉम्स में रखी है। वो चंगा करने वाला है, और तुम्हारा छोटा लड़का मरने पर है, बिली पॉल 18 महीने का था, और तुम्हारी छोटी लड़की जो 8 महीने की है यहाँ पड़ी है, मेनिनजाइटिस से मर रही है, और तुमने केवल प्रार्थना की और परमेश्वर ने चादर नीचे खींच दी, कहा चुप रहो, मत सुनो, वो तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेगा, तुम्हारी ओर पीठ फेर ली। वो अच्छा परमेश्वर है, हा? वो तुम्हें प्यार करता है, और प्रत्येक लड़की जिसके साथ तुम कभी गए, हर लड़का जो तुमसे संबंधित था, तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र, जैसे तुम कट्टर धर्मी हो, तुमसे अलग होते चले गए। हर बात जो वो मुझे बता रहा था सत्य थी, हर बात जो वो बता रहा था बिल्कुल एक दूसरे से ठीक मिल रही थी। देखा यहाँ, मैं बस कहने के लिए तैयार था, तब मैं, यदि इस प्रकार से उसने व्यवहार करना है तो मैं उसकी सेवा नहीं करूँगा। जैसे ही मैंने ये कहा, वहाँ कोई चीज थी जो कहीं से मेरे अंदर की ओर आई, कहा तू आरंभ से कौन है? प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। देखिए, ये अंदर का मनुष्य है, कभी तर्क वितर्क नहीं करता। मैंने पीछे देखा और सोचा कि मैं पृथ्वी पर कैसे आया, मैं तो पियकड़ों के बीच से आया हूँ, मैं यहाँ कैसे आया, किसने मुझे जीवन दिया, किसने मुझे पत्नी दी, किसने मुझे बालक दिया, मेरी पत्नी कहाँ से आई, मेरा जीवन कहाँ से आया। मैंने कहा यद्यपि वो मुझे मार डाले तब भी मैं उस पर विश्वास करूंगा। मैंने कहा शैतान मुझसे दूर हो। मैंने अपना हाथ बच्ची पर रखा, मैंने कहा प्रिय शेरोन, मैं कुछ मिनटों पश्चात तुम्हें तुम्हारी माँ की बाहों में रख दूंगा, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत तुम्हें लेने आया, परंतु एक दिन तेरा पिता तुझसे फिर मिलेगा। प्रिय, मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगा, मैं नहीं बता सकता कैसे, उसने मेरी ओर पीठ फेर ली है, तुम्हारे लिए भी नहीं सुनेगा। उसने मेरी पत्नी को मरने दिया, मैं उसके हाथों को पकड़े उसके लिए रो रहा था, मेरे पिता इन हाथों में मर गए, इन्हीं हाथों पर यहाँ मेरी ओर देख रहे थे, अपनी सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, और मैं जितनी व्याकुलता से प्रार्थना कर सकता था कि मैं कैसे फिर से जनता में दिव्य चंगाई प्रचार कर सकता था, मैं कैसे प्रचार कर सकता था कि वो भला परमेश्वर है और मेरी ही अपने पिता को पाप में मरने दिया, मैं ये कैसे प्रचार कर सकता हूँ, मैं नहीं जानता कैसे, परंतु मैं जानता हूँ कि वो सही है। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होगा, वो विजयी होगा, इससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या है। तब मैंने जाना इन सब तर्क वितर्क को छोड़ कोई और चीज अंदर है, इन भावनाओं से भी अंदर कुछ है, सब चीजें ऐसी ही हैं। वहाँ कोई भीतरी मनुष्य है जो इस घड़ी में थामे रहता है, कोई और इसे नहीं कर सकता। हर तर्क, हर चीज दिखाई जा सकती थी, हर चीज सिद्ध की जा सकती थी, वो गलत थी और मैं गलती पर था, परंतु परमेश्वर का वचन जो कि संसार के रचने से पहले ठहराया गया था, अंदर से थामे हुआ था। मैंने इमारत में थोड़ी सी हवा आती हुई अनुभव की, उसकी आत्मा परमेश्वर से मिलने को चली गई। भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, यही केवल एक चीज है, इस पर तर्क करने की कोशिश मत कीजिए, लंबे बाल रखने का यत्न मत कीजिए क्योंकि मैंने ऐसा कहा है, इन बातों को करने का यत्न मत कीजिए क्योंकि आपके शरीर में, इसे करने की कोशिश मत कीजिए, ये बराबरी करने जैसा है। परंतु प्रभु के सम्मुख प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि अंदर की ओर कुछ ना हो। आप में से बहुत से सोचते हैं क्योंकि आपके बाल लंबे हैं इसका अर्थ यह है कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं है। उनमें से बहुत सी सोचती हैं क्योंकि आप अच्छे चरित्र की महिला हैं, तो आप जा रही हैं, इसका ये अर्थ नहीं है। उनमें से बहुत से सोचते हैं उनकी कलीसिया के कारण वे उनके बड़े झुंडों और बड़े बड़े दिव्य डॉक्टरों से संबंध है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो समझे। बहुत से सोचते हैं क्योंकि वे अन्य भाषा बोलते हैं उनके पास पवित्र आत्मा है, इसका अर्थ ये नहीं है। यद्यपि पवित्र आत्मा अन्य भाषाओं में बात करता है, परंतु जब तक वो वास्तविक मूल पवित्र आत्मा यहाँ पर प्रत्येक वचन से नहीं मिल जाएगा। यदि वो पवित्र आत्मा आप में है, वो आपसे अन्य भाषा बुलवाता है, वापस घूम कर देखें, वो शेष वचन के साथ सहमत नहीं होती, तो ये गलत आत्मा है, समझे। ये तो अंदर की ओर से ही आना है, जो कि आरंभ से ही वचन है। परमेश्वर के संसार के रचना के आरंभ में, जब परमेश्वर ने सृष्टि आरंभ की, आपको अस्तित्व में लाया, देखा आपने, आप वहाँ बीज की तरह आरंभ हुए और ठहराए गए जहाँ अब आप हैं, और तब आप मसीह में थे, और तब जब मसीह मरा वो आप सबको छुड़ाने के लिए मरा, और आप इस वचन के भाग हैं। और कैसे हो सकता है कि बाइबल सारी की सारी, नियम पर नियम, पंक्ति पर पंक्ति, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, एक भी बिंदु या छोटा सा टुकड़ा भी असफल नहीं हो सकता। आप कैसे इस संसार के अंदर वचन का भाग होते हुए बाकी वचन से असहमत हो सकते हैं, या उसके किसी एक भाग से? परमेश्वर आपको आशीष दे। मैंने समय अधिक ले लिया, मेरा ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं था कि मैं आपको इतनी देर तक रोकूं। अफसोस है कि आपको रोके रखा, जो मैंने कहा उसका अफसोस नहीं। मित्रों, हम किसी चीज के अंत में हैं। आप सब जो यहाँ हैं, मेरा अनुमान है कि आप यहाँ गिरजे के सदस्य हैं। समय रहते ये देखने के लिए इधर उधर मत घूमो कि कितने सदस्य हैं। मैं सोचता हूँ आप सब यहाँ बराबर आने वालों में से हैं। मैं आपको बता दूँ जो कि घटित हुआ। क्या आप 6 मिनट और निकाल सकेंगे? क्या वो रेवरेंड श्री ओ वॉकर यहाँ ओरेगांव से हैं, जो कि यहाँ उस रविवार को थे, मैं यहाँ था? कोई इस विषय में जानता है? वो एक महान अजीब चीज थी। मैं यहाँ आया तो यहाँ बहुत से लोग अंदर थे, मेरे पास ढेर सारे साक्षात्कार थे, और उनमें से हर कोई उचित था। उनके लड़के, बालक, विवाहित, पीने वाले, और भिन्न भिन्न चीजें और कुछ चीजें जो कि उचित थीं, उनमें से हर किसी को देखना था। मैं वो सब नहीं कर सका, और मैंने आपको परमेश्वर को सौंप दिया और प्रार्थना में उन पर हाथ रखे। मैंने कहा, ओ परमेश्वर, मैं ये नहीं कर सकता। प्रभु के पास ले गया, करिए, आप जानते हैं कि कैसे करना है। मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। बिली ने मुझे बुलाया, और तभी मैं भाई बहन के साथ भीतर आया था। उसने कहा, पिताजी, यदि आप, और देखिए, मैं कभी कभी लोगों को गलियों में गाड़ी चलाते हुए ढूंढते हुए देखता हूँ, और मैं उनकी ओर देखता हूँ और इस तरह से उनकी ओर हाथ हिलाता हूँ, और वे अपना सर लगभग पूरा घुमा लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। उस दिन जब वे टूसान में मेरे रहने के लिए स्थान खरीद रहे थे, भाई टोनी की वहाँ पर जगह थी, वो मेरे लिए लगभग 3 या 4 गुनी खरीदना चाहते थे, चाहे जो दाम हो। वो उसमें कई हजार डॉलर मिलाना चाहते थे अपनी ओर से, परंतु वहाँ अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता था। एक सज्जन पुरुष वहाँ खड़ा था, एक भारी भरकम ये वहाँ और जुड़ा हुआ था, परंतु कोई, ये लोग जो वहाँ रहते हैं, आपको लिखित अनुमति लेनी होती है, तब ये सज्जन आपको बुलाता है और देखता है कि ये उनके हिसाब से ठीक है कि वे अंदर आएं। मैंने कहा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, मुझे मेरे भाई और बहन जो मुझे मिलने आए, जो मुझसे हाथ मिलाना चाहते हों और मेरे लिए परमेश्वर से आशीष चाहते हों। टोनी, क्या आप मेरे लिए यह कल्पना कर सकते हैं कि मैं वहाँ रहूं? उसने कहा, ठीक है, आपको। मैंने कहा, टोनी, जिस तरह कलीसिया और वे सारे लोग हैं जो चारों ओर नहीं आते, मैंने कहा, ये लोगों के लिए है, उनके पास सब कुछ है जो वो मेरे लिए करना चाहते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, प्रभु ने मुझे बताया है, हालेलुया, मैं यही रहने जा रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु ने मुझे बताया है कि आप यहाँ हमारे झुंड में सभा करने जा रहे हैं। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ने मुझे ये बताया है। भाई ब्रैनम, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चय ही आप पिछड़ गए। मैं वहाँ रहकर अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये क्या है, देखा, और बहुत से अच्छे व्यक्ति इस कारण अंदर जाने के लिए असफल हो जाते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य खेतों में शिकार के लिए जाता है और किसान कहता है, अंदर आइए, आप शिकार खेल सकते हैं, और आप बाहर निकलकर उसकी एक गाय को गोली मार देते हैं। एक खरगोश गाय के नीचे से निकलकर भागा और कैसे भी खरगोश पे गोली दागी। आप तारों की बाड़े पर गए और बजाय इसके खंबे पर जाते और उस पर चढ़कर एक तब्बे व्यक्ति की तरह करना चाहिए था, तारों पर चढ़कर, और उस तार की हदबंदी को इस तरह से तोड़ दिया, समझे। और तब वो क्या कहेगा, मैं बंद कर दूंगा, मैं उस पर जरा सा भी दोष नहीं लगाता, जरा भी नहीं। भाई, वो क्या करता है, उसने एक अच्छे सभ्य शिकारी को अंदर आने से रोक दिया। ये सदा ऐसे ही होता है। ये बुराई है कि अच्छाई को उत्तमता से अलग करना, ये सदा से है। परंतु वे लोग हजारों हैं और सच में दरिद्र हैं और अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग, परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर। अब हमारे पास ये है, ये लोग कैसे इस प्रकार आते हैं, हम ये नहीं चाहते। परंतु ये मनुष्य आता है। बिली ने कहा, पिताजी जल्दी से नीचे भाग चलो। कहा, श्रीमती वॉल्ड्रॉफ यहाँ नीचे हैं, उन कुछ मरते हुए लोगों के साथ, उन्हें एकदम देखना चाहिए। और मैं अंदर भागा, यहाँ नीचे आया और वापस आते हुए उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई नहीं, परंतु एक आदमी कोने में एक तरफ सो रहा है, वहाँ इमारत के एक और तकिए पर रोज सोता है। कहा, वो चाहता है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा, ठीक है। कहा, मैं उसे अंदर लिटाऊंगा। मैं अंदर आया, मैं सोचता हूँ कि वहाँ एक कैडिलैक कार में पीछे की ओर बैठा था या किसी प्रकार की बड़ी कार। मैं अंदर घुसा और उस मनुष्य ने कहा, आप कैसे हैं? वो मुझे नहीं जानता था और मैं अंदर गया और बहन वॉल्ड्रॉफ बेचारी बूढ़ी अंदर थी, आप जानते, वो थी, आप उनके मामले को जानते हैं, क्या नहीं जानते? देखिए, उन्हें कैंसर था और एक घंटा पहले कि मैं उन तक पहुंचता, वो प्रार्थना पंक्ति में मृत हो गई और डॉक्टरों ने आकर उसे दिखाया। ये लगभग 18 वर्ष पहले की बात है, उनके हृदय में कैंसर था और वो आज भी जीवित हैं। और अब वो नीचे अरकनसास में रह रही हैं और तब वो फिनिक्स में थी। और उसने कहा, भाई बिली, मुझे ऐसा आना अच्छा नहीं लगता, परंतु कहा, मेरे पास कोई ठहरने का स्थान नहीं है, बुरा लगा। उन्होंने कहा, ये लोग, ये महिला मरने वाली थी, भाई बिली। कहा कि भाई बिली, मैं अपने हाथ में आपके लिए कुछ भेंट लाना चाहती थी। कहा, परंतु मैं ऐसा कर ना सकी, परंतु मैं कुछ जेली भरकर लाई हूँ। ओ, जब मैं वहाँ गया और उन जेली की छोटी बोतलों को देखा, वो वहाँ बैठी हुई थी, वो मुझे बहुत ही पवित्र लगी कि मैं इसे खाऊं, समझे? वो प्रिय बूढ़ी महिला, लगभग 70 वर्ष की। मैंने कहा, बहन हैटी, मैं ना नहीं कर सका। नहीं, यीशु ने उस विधवा को 3 दमड़ियां डालते देखा था और उसने उसे करने दिया, समझे? परमेश्वर उसको इसके लिए प्रतिफल देगा, जी हाँ। और इसलिए प्रभु ने महिला को चंगा किया, उसने उसका सब कुछ चंगा कर दिया और उसके पास्टर को, जो उसके मस्तिष्क में था, सब प्रकट कर दिया। दूसरी बात की उसे क्या करना चाहिए, और ओ, वे सब खुशी से चिल्लाते हुए बाहर चले गए। तब बिली अंदर भागता हुआ आया, उसने कहा, पिताजी वो मनुष्य तो गया, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, वहाँ बाहर उस कार में कौन है? ओ, उसने कहा, कोई व्यक्ति और ही गांव से आया है, कहा कि उसने कोई स्वप्न देखा है। मैंने उसे बता दिया कि मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा, अभी यहाँ 300 लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कहा कि मैंने उसे कह दिया कि अपना स्वप्न लिखकर, कहा कि मेरे पास इनका इतना ऊंचा ढेर है जो भी है, और ये भी कह दिया। मैंने कहा, उसे अंदर ले आओ, उसे 5 मिनट दे दो। ठीक जैसे ही वो व्यक्ति अंदर आया, 5 मिनट, उसने कहा, मैं रेवरेंड वॉकर हूँ, मैं सोचता हूँ, उसका यही नाम था, ओरेगॉन से था, मैं सोचता हूँ कि वो किसी और नामधारी गिरजे से, प्रेस्बिटेरियन, मैं नहीं जानता, प्रेस्बिटेरियन ऐसे ही कुछ। उसने कहा, मैं आपसे 20 वर्ष पहले मिला हूँ, मैं ग्रांड पास आया था, जहाँ आप, या ग्रांड पास से नहीं, परंतु मैं उस स्थान का नाम भूल गया, वहाँ। कहा कि सारा प्रदेश हर प्रातः के अखबार में होता है, बोला कि सब उसके बारे में जानते हैं। कहा कि मैं उस इमारत तक भी नहीं पहुंच सका जहां आप थे, परंतु मैंने आपको ऊपर चढ़ते देखा। और एक दिन मैं सड़क पर गया, मैं चल रहा था, 4 या 5 व्यक्ति आपके चारों ओर थे और मैंने आपसे हाथ मिलाया और आप, मैंने आपको बताया कि मैं भाई वॉकर था और आपने मुझे बताया था कि आप कौन हैं। कहा कि हमने थोड़ी बातें की और तब 3 या 4 बड़े व्यक्तियों ने, जो आपके साथ थे, थोड़ा सा आपको आगे को धक्का दिया। उसने कहा, मैं आपका आलोचक नहीं हूँ, न ही मैं कभी आपके लिए था। उसने कहा, मैं बस समझ नहीं सका। उसने कहा, कुछ वर्षों तक मैं उसी मार्ग पे चलता रहा और फिर थोड़े समय बाद, कहा लगभग 3 वर्ष पहले, एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कुछ टेप सुनने को कहा और कहा कि उसने टेपों को चलाया और जब उसने चलाए, उसने कहा, मैंने उससे बातें करते सुना और कहा, ये व्यक्ति विश्वास करता है कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। मैंने कहा, मैंने उस व्यक्ति को बताया, मैं इन बातों के विषय में नहीं जानता, हो सकता है मैं सब कुछ जानता हूँ। इस प्रकार कहा कि एक और व्यक्ति हमारे शहर में आया, सभा की, और मैं उससे मिला और उसने कहा, मैं इन दिनों के लिए परमेश्वर का भविष्य रखता हूँ। उसने कहा, आप में से कितने लोग वहाँ थे, जो भी हों? कहा, मैंने उस व्यक्ति को सुना जो यहाँ टेप सुना रहा था, बोला विलियम ब्रनम जो पूर्व में थे वो आज का भविष्य रखता है और इस प्रकार की बातें। उसने कहा, ये व्यक्ति, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, आप समझे? और उसने कहा, मैं विलियम ब्रनम को जानता हूँ, बोला, परंतु वो अपने सिद्धांतों में बिल्कुल गलत है। कहा कि वो पेंतिकोस्तल नहीं है, वो प्रारंभिक प्रमाणों में विश्वास नहीं करता। और कहा, दूसरी बार वो कहता है कि मुख्य और छोटे भविष्यवक्ता होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोला, या तो आप भविष्यवक्ता हैं या फिर नहीं है, और कुल मिलाकर यही है। उसने कहा, ठीक है श्रीमान, मैंने इस विषय पर आपसे विवाद नहीं किया, मैंने बस कहा, मैंने इस व्यक्ति को ये कहते सुना कि ये व्यक्ति विलियम ब्रनम और ये व्यक्ति दावा करता है कि वो भविष्यवक्ता है। कहा, मैं आश्चर्य में पड़ गया कि कितने हैं। उसने कहा परंतु मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जान लो कि इस युग का मैं ही भविष्यद्वक्ता हूँ। उसने कहा अच्छा आप हैं। कहा प्रभु आपको आशीष दे और आपके साथ हो। वो चला गया, कभी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। और उसने कहा कि उसने अपने भाइयों के बीच में 3-4 सभाओं का क्रम आरंभ किया और वो डाक खाने में गया, कहा कि डाक का कोई पैसा मत वसूलो जब तक मैं 4 या 5 दिन बाद वापस आऊं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इस पर पर्ची लगा दी कि इसे बदलना नहीं। वो चला गया और अपनी पुत्री से मिला और बाहर सड़क पर वो एक गिरजे पर रुका और वहाँ उसकी एक रात्रि की सभा थी। अगली प्रातः उसने कहा कि उसके विचार में आया जाओ जाकर साधारण डाक ले आओ। और जब उसने ये किया एक पत्र डाक द्वारा आया जो कि उसकी पुत्री की ओर से आया था। उसकी पुत्री ने वहाँ भेजा था साधारण डाक में और उसने उसे खोला और कहा कि ये कोई व्यक्ति था श्री हिलब्रेंडेड जो कि मेरा मित्र है। यही व्यक्ति था जो टेपों को चला रहा था। कहा कि हिलब्रेंडेड को रॉय बॉर्डर से कोई संदेश मिला और वो प्रबंधकर्ताओं में से एक हैं, आप जानते हैं। और मैं यहाँ पर सभा आयोजित कर रहा था 28 से पहली तक वापस आकर और स्वयं ही देखने के लिए। उसने कहा अब यहाँ देखिए, वे लोग मुझे कुछ ऐसी बात में घसीटने की कोशिश में थे। और उसने वो चिट्ठी कूड़ेदान में डाल दी और ऐसे देखता हुआ चला गया। अंदर जाकर उस रात्रि सभा की और अगली प्रातः तब वही कमरे में हृदय पर हाथ रखकर रोना आरंभ कर दिया। उसने कहा भाई ब्रैनम मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। उसने कहा मैं नहीं जानता, पता नहीं मैं सो रहा था या क्या हुआ था। उसने कहा मैंने स्वप्न देखा, मैं यही कहने जा रहा हूँ कि मैं सो रहा था और मैंने स्वप्न देखा। कहा मैंने सोचा मेरा पुत्र बाजार में है और उसने बोरे में हाथ डाला। और कहा जब उसने ये किया तो सेबों का बोरा था और वे सब पलट गए। कहा जब मैं उन्हें उठाने को गया वे सब हरे थे और उन सब में एक मुंह मारा हुआ था। कहा कि मैं उन्हें उठा रहा था और वापस बोरे में डाल रहा था। कहा कि उनमें से कुछ दूर लग गए इसलिए मैंने जाकर उन्हें उठाने का यत्न किया और वहाँ घास में। और कहा इनमें से कुछ जंजीरों के बाड़े के अंदर लुढ़क गए और वहाँ बड़ा भोजन समारोह था, चौड़ा मार्ग अंदर जा रहा था। मैंने पूर्व की ओर देखा और उसने कहा जंजीर बड़ी चट्टान में पूर्व की ओर लगी हुई थी। और मैं वहाँ वापस गया और सोचा मैं इस जंजीर को नीचे करके तब इन सेबों को उस व्यक्ति के लिए ले लूंगा। कहा कि मैं जंजीर को नीचे करने लगा, कहा कि एक आवाज ने सारी धरती को हिला दिया। कहा कि धरती मेरे पैर के नीचे से हिली और कहा इसके हिलने के बाद मैंने एक आवाज सुनी और कहा भाई ब्रैनम वो आपकी आवाज थी। कहा मैं जान गया कि कोई बात वहाँ पर कही गई थी। कहा ये कहा गया कि मैं इस लीक पर एक बार फिर से चलूंगा। और कहा और मैं चट्टान को इस प्रकार देखने लगा और ऊपर देखा कि पीछे बादल है और वहाँ से चट्टान पर खड़े हुए जो कि पूर्व से आरंभ करके पश्चिम की ओर इस तरह से नोकदार पिरामिड की आकार में वापस यहाँ पूर्व की ओर आ रही थी। और कहा और आप घोड़े पर खड़े हुए थे जो कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी। बड़ा सफेद घोड़ा, गर्दन पर से सफेद बाल नीचे लटक रहे थे। और कहा आप इंडियन प्रधान मुखिया की तरह वेशभूषा पहने हुए थे, उन सारी चीजों के साथ वो इंडियन उपयोग में लाते हैं। कहा उसके सीने पर कवच लगा हुआ था और हाथों में चूड़ियां और इस प्रकार से नीचे को। कहा आपके हाथ इस प्रकार ऊपर थे। और कहा वो घोड़ा ऐसे खड़ा था जैसे सेना का घोड़ा इस तरह से उछलते हुए चल रहा था। मैं चुपचाप खड़ा रहा। और कहा आपने लगाम खींची और सवारी करते हुए पश्चिम की ओर चले गए। कहा मैंने नीचे की ओर देखा और वहाँ वैज्ञानिकों का झुंड था। और अगली प्रातः शनिवार था, अगली प्रातः मैंने वैज्ञानिकों पे प्रचार किया, आप जानते हैं शैतान का जीवन। और कहा वैज्ञानिक परख नलियों में से चीज डाल रहे थे और उसे मिला रहे थे। कहा कि आपने घोड़ा रोका, अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाए मैं एक बार इस लीक पर फिर चलूंगा। और कहा सारी पृथ्वी हिल गई, वे लोग हिल गए। कहा ऊपर देखो, एक दूसरे को देखा इस प्रकार से और ऊपर आपको देखा, उन्होंने अपने कंधे उचकाए और अपनी वैज्ञानिक खोजों के साथ चले गए। और कहा आपने पश्चिम की ओर चलना आरंभ कर दिया। और जब ये हुआ, कहा मैंने इस मनुष्य को देखा जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहलाता है, आप जानते हैं। कहा कि वो घोड़े पर आया, वो सफेद और काला एक साथ मिला हुआ था। और कहा वो इस बड़े घोड़े के बाद पीछे से खड़ा हुआ। कहा वो था, कहा वहाँ बादलों के ऊपर और वहाँ सड़क भी उतनी चौड़ी नहीं थी। और कहा वो घोड़ा केवल कहा हवा उन पंखों को उड़ा रही थी और हर चीज आपके अधिकार में थी। और कहा तब घोड़े की गर्दन, गर्दन के बाल और पूंछ हवा से उड़ रही थी। महान स्वामी, बड़ा सफेद घोड़ा सीधा चल रहा था। और कहा ये व्यक्ति तुम्हारे पीछे आएगा, कनाडा की ओर से आया था और ये व्यक्ति कनाडा में रहता है। और उसने कहा वापस आ जाओ। और उसने अपना छोटा घोड़ा लिया और आपके बड़े घोड़े से आगे निकलने का यत्न किया, उसे वापस घुमाया और अपनी जांघें उस घोड़े पर भरी। कहा ये उस बड़े को कुछ नहीं कर सका, वो केवल चलता रहा। कहा तभी यकायक कहा आप वापस घूमे, कहा ये तीसरी बार होगा जब बोले, परंतु दूसरी बार आपने कहा मैं सवारी करूंगा, और कहा आपने ऐसे नहीं कहा जैसे पहले कहा, आपने अधिकार सहित कहा था। कहा आप घूमे और व्यक्ति को नाम लेकर पुकारा और कहा यहाँ से चले जाओ, तुम जानते हो कोई भी मनुष्य परमेश्वर के बिना अभिषेक के जिसे ये करने के लिए दिया गया है ये सवारी नहीं कर सकता, यहाँ से चले जाओ। और कहा वो व्यक्ति वापस घूमा और कहा उस व्यक्ति ने मुझे ये पत्र लिखे और कहा उसके घोड़े के पिछले पुट्ठे पर जिसमें काला और सफेद दोनों मिले हुए थे, कहा उसके घोड़े के पुट्ठों पर उसका नाम लिखा हुआ था और हस्ताक्षर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि उसके पत्र पर थे, और वो सवारी करता हुआ उत्तर की ओर चला गया। कहा तब आप नीचे की ओर चले गए, वो बड़ा घोड़ा घूमा पश्चिम में जहाँ तक आप जा सकते थे। कहा कि आप खड़े हुए और अपने हाथ इस प्रकार उठाए, तब वो रोने लगा। कहा भाई ब्रनम उस घोड़े को वहाँ खड़ा हुआ देखकर वो सब लड़ाई का टोप और इस प्रकार की हर चीज, और कहा वो सीने का रक्षा कवच और हर चीज चमकी। कहा आपने अपने हाथ थोड़ी देर के लिए ऊपर रखे और कहा आपने फिर से नीचे देखा और लगाम पकड़कर कहा मैं इस लीक पर केवल एक बार और चलूंगा। कहा सारी पृथ्वी आगे से पीछे इस प्रकार से हिल गई और कहा मुझ में और जीवन नहीं बचा, मैं चट्टान की एक और गिर पड़ा, तब मैं जाग उठा। कहा श्रीमान इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। अगली प्रातः जूनियर जैक्सन, जिन्होंने पैरामिड के विषय में स्वप्न देखा था, आप जानते हैं मैं पश्चिम की ओर चला गया था, आपको याद है, उन्होंने इसके एक या दो महीने पहले मुझे फोन किया था। उसने एक स्वप्न देखा था जो कि उत्तेजित कर रहा था, उसे मुझको बताना था, और मैंने कहा बिली वहाँ लगभग 20 बाहर खड़े थे। उसने कहा जूनियर जैक्सन वहाँ है, कहा कि उन्हें आपको अपना वो स्वप्न बताना है। मैंने कहा उसे अंदर भेज दो केवल 5 मिनट के लिए। वो अपनी पत्नी को अंदर लाया, कहा गवाही के लिए। उसने कहा मैंने स्वप्न देखा भाई ब्रनम, मैं और मेरी पत्नी बाहर घुड़सवारी कर रहे हैं, और कहा मैंने पूर्व की ओर देखा और देखा एक उड़नता स्त्री के आकार का जैसा कोई एक निशान है। देखिए संसार नहीं जानता कि वो क्या है, आप जानते हैं, आप जानते हैं कि ये चल रहा है, हम जानते हैं कि ये क्या है, समझे, हम जानते हैं कि ये न्याय की जांच परख करने वाले स्वर्गदूत हैं, देखा आपने, और कैसे पेंटागन और ये सब कैसे हैं, ये सीधी सीधी नीचे आती है और वो खुफिया विभाग वे कैसे कर सकते हैं, बिजली की कौंद की तरह चली जाती है और गई, इनके पास जो भी होता है उससे बाहर निकल जाती है। देखिए ये अनुभव नहीं करते कि ये क्या है, देखा, उन्हें सोचने दीजिए, वे जो भी चाहते हैं, वे इसे उड़नतस्त्री कहते हैं या जो भी, वे नहीं जानते, देखा। कहा कि मैंने इसे आते देखा और मैंने इस पर ध्यान दिया, और ये क्या था, ये एक व्यक्ति घोड़े पर था, और कहा वो बिजली की रोशनी की तेजी से आ रहा था। कहा मैंने देखा वो मेरे सामने आने वाला था और मैंने अपनी कार रोकी और जल्दी से बाहर निकला। जब ये हुआ कहा कि कार घोड़ा सड़क पर खड़ा था, बड़ा सफेद सेना का घोड़ा उछलते हुए सीधा चल रहा था। आप जानते हैं वास्तव में ये वचन है, सीधी चाल में चल रहा है। कहा कि वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था, बताया कि वो पश्चिम वेशभूषा में था, चरवाहा नहीं था, परंतु बताया कि जंगल का मुखिया जो जंगल की देखभाल करने वालों के ऊपर होता है या ऐसा ही कुछ। देखिए पश्चिम से लेकर उसका अधिकार मुख्य था, इंडियन के ऊपर देखभाल करने वाले थे, देखा। और कहा उस व्यक्ति ने अपनी टोपी नीचे को कर रखी थी और एक और देख रहा था, और कहा जब वो एक और घूमा तो कहा भाई ब्रनम वो आप थे। कहा कि आपने कभी भी इस प्रकार बात नहीं की जैसे करी, आपने कहा जूनियर, उसे 3 बार पुकारा और कहा मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, और कहा तब आपने इस घोड़े की लगाम खींची और आपने 3 बार हिचकोले से लिए और आकाश की ओर हो लिए और आप पश्चिम की ओर चले गए। उसने कहा एक मिनट, मैंने चारों ओर देखा और वहाँ पर एक और उससे छोटा घोड़ा, उसी नस्ल का परंतु छोटा घोड़ा खड़ा था। कहा मैं चारों ओर घूमा और कहा कि आपने ये मेरे लिए वापस भेजा होगा। कहा कि मैं उस पर सवार हो गया। जूनियर ने भी थोड़ी घुड़सवारी की है। उसने कहा आप जानते हैं कि आपकी जीन आपको कैसे ठीक बैठती है, वो रकाब और सब चीजें। कहा मैंने सोचा ठीक है, ये मुझे भी ठीक आती है, इसलिए मैंने भी लगाम खींची और आकाश की तरफ हो लिया। कहा मैं लगाम खींचता रहा और उसे रोक दिया, उसे वापस घुमाया और वापस चला गया, समझे। जब मैं वापस चला गया कहा कि मैंने घोड़ा रोका, नीचे उतरा और अपनी पत्नी से बातें की, घोड़ा चला गया था और वो पूरा हो गया था। तब परसों 3 दिन पहले लियो मर्सियर आए बिल्कुल ऐसे ही स्वप्न के साथ। इस विषय में वो कुछ नहीं जानते थे, एक बड़े सफेद वाले स्टेलियन का काली घोड़ी से बच्चा प्रजनन करवाना चाहते थे और वे इसे नहीं कर सके, परेशान थे। कहा कि मैं वहाँ गया, कहा लियो, और बताया कि मैंने क्या किया। मैं वो यहाँ नहीं कहना चाहता, समझे, परंतु मैंने उसे बताया कि मैंने क्या किया। कहा क्या तुम नहीं देखते? अब ये जानने के लिए मुझे नहीं मालूम था एयर डल्टन के दामाद भी हैं और दामाद के पास इस नाम से कुत्ता भी था। लियो तुम जान जाओगे कि तुम स्वप्न देख रहे हो, परंतु जब तुम जाग उठे इसे याद करो। और कहा, मैंने ऐसा अधिकार भरी आज्ञा कभी नहीं सुनी। उसी समय के लगभग रॉय रॉबर्टसन अंदर आए और कहा, भाई ब्रनम, आपको याद है कुछ दिनों पहले, इससे पहले कि आप गिरजे को पहली बार छोड़ते, हम मैंने आपको ऐसे देखा जैसे कि आप पैलेस्टाइन में बैठे हैं। हम सब बोर्ड में बैठे हुए थे और हर चीज ऐसे जैसे प्रभु भोज की मेज लगी हुई, और तब आपने बातें की और आप वो निश्चित नहीं था कि आप क्या बातें कर रहे थे। कहा, एक सफेद बादल नीचे आया और आपको उठाकर ले गया। कितनों को भाई रॉबर्ट्स का स्वप्न याद है। और कहा, वो सफेद बादल आपको उठाकर ले गया और कहा, तब आप चले गए थे। मैं गलियों से चिल्लाता और रोता हुआ चला गया। जब मैं यहाँ बाहर आया और वो बूढ़ा निर्बल हाथ वाला जैसे कि वो ये पढ़ रहा था, जब उसने मुझे वहाँ बाहर निकलते देखा तो उसने पांचा गिरा दिया और रोना आरम्भ कर दिया। मैंने उसे नहीं देखा था। फिर उसने मुझे स्वप्न बताया और उसने कहा, और वो पांचा से जमीन समतल कर रहा था। मैंने कहा, और आप चले गए? कहा कि मैं गलियों में और सब जगह घूमा कि आपको ढूंढ लूं, मैं आपको कहीं नहीं ढूंढ सका। मैं चिल्ला रहा था, ओ भाई ब्रनम, हमें मत छोड़ो। कहा, एक सफेद बादल अंदर आया, आप पर आया और हमसे अलग करके पश्चिम की ओर ले गया। ये पैरामिड से पहले की बात है या ऐसी कुछ, समझे? कहा, वो आपको पश्चिम की ओर उठा कर ले गया और मैं रोया और गलियों में घूमा। कहा, कुछ देर पश्चात मैं गया और मेज पर बैठ गया। मैंने यकायक मेज के मुख की ओर देखा। कहा, मैं काफी कुछ देख पा रहा था कि आप बर्फ के समान श्वेत थे। कहा, आप वहाँ खड़े हुए थे और कहा, आप अधिकार के साथ बोले। उसमें कोई अनुमान वाली बात ना थी। कहा, हर मनुष्य बिल्कुल ठीक ठीक समझ रहा था जो आप कह रहे थे। ओ मेरे भाई और बहनों, आप में से हर एक सचेत है, मैं जानता हूँ इसका क्या अर्थ है, समझे? केवल जागते रहें और मसीह के पास बने रहें। अब मैं आपको इस सुसमाचार का सेवक होने के नाते चेतावनी देता हूँ, कोई भी मूर्खता न करें, कोई कल्पना न करें। वहाँ तब तक बने रहें जब तक ये अंदर से अंदर वाला वचन के साथ लंगर न डाल ले कि आप बिल्कुल मसीह में हैं, क्योंकि केवल यही चीज है जो कि करने जा रही है, क्योंकि हम सबसे धोखे वाले युग में हैं जिसमें हम रह रहे हैं। यदि हो सके तो ये चुनावों को भी धोखा दे दे, क्योंकि उन पर अभिषेक है, वे औरों की तरह कुछ भी कर सकते हैं। अपने जीवन को साफ कर लें, अपने कर्जे चुकाइए। यीशु ने कहा, किसी का उधार ना रखें। अब मेरा मतलब आपके घर के किराए और ऐसी चीज है, ये आपको करनी है। सब चीजों से अपने हाथों को बचा कर रखें, हर चीज को ठीक कर लें, तैयार रहें, तैयार हो जाएं। याद रखिए, प्रभु के नाम में कुछ घटित होने के लिए तय है। मैं इस सप्ताह पहाड़ों पर जा रहा हूँ, गिलहरियों के शिकार ही करने को नहीं। मुझे गिलहरियों का शिकार अच्छा लगता है, परंतु वहाँ जाने का मेरा उद्देश्य ये है, ये कहने, ओ परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि मुझे किस ओर जाना है और मैं इसमें चूकना नहीं चाहता, मेरी सहायता करें, मेरे लिए प्रार्थना करें। क्या आप ये करेंगे? मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आशा करता हूं कि मैं आप में से प्रत्येक से मिलता हूं और हम अच्छे देश में मिलते हैं जो यहां हैं। और हम यहां किस लिए आते हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम यहां खेल खेलने आते हैं? क्या हम घर की तरह यहां मिलने आते हैं? ये मसीह तब तक नहीं आ सकता जब तक कलीसिया ठीक नहीं हो जाती। वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि हम अंत में हैं। कैलिफोर्निया में देखें, मारकाट को देखें, देखिए 19 लोग जातिवाद के कारण मारे गए। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों को मारकाट की ओर अग्रसर कर रहा है? आप में से कितनों को याद है? क्या वे अश्वेत लोग नहीं है? ये उनके नेता है जो उन्हें उत्तेजित कर रहे हैं। क्या ये आपस में व्यवहार करना, अलग करना नहीं? और जो भी वे से कहना चाहें, ये शैतान है। ये ठीक बात है, ये केवल गोरों कालों के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है। ये शैतान है। मनुष्य के मस्तिष्क की इंद्रियां और तर्क टूट चुके हैं। अब कोई आशाएं नहीं, ये आशा से परे है। कुल मिलाकर सब सड़कर खट्टा हो गया। मनुष्य की मस्तिष्क की इंद्रियां ये निर्णय नहीं ले सक रही हैं। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं ना तो प्रजातंत्री या गणतंत्री नहीं हूँ, ये सब गंध है। मैं एक राज्य के लिए हूँ और वो यीशु मसीह का राज्य है, बस इतना ही है। परंतु कैसे आप संसार में इन कठपुतलियों के समूह को देख पाए जैसे वहाँ अब हमारे पास है, जैसे कि वो टेक्सास का हमारा वो समूह जो वहाँ पर है? क्यों? वे कहते हैं जो भी लोग पसंद करते हैं। यदि वे कम्युनिस्टवाद चाहते हैं तो हम उन्हें कम्युनिस्टवाद देंगे। यदि वे एकीकरण चाहते हैं तो हम उन्हें एकीकरण देंगे। अलगाव चाहते हैं, जो भी है हम देंगे। कर दिया। मनुष्य कहाँ है? ओ परमेश्वर, ये प्रचार मंच की तरह है। मनुष्य कहाँ है? मनुष्य, वो मनुष्य जो सिद्धांतों का पक्ष लेता है। वे स्त्रियाँ कहाँ हैं जो सिद्धांतों का पक्ष लेती हैं? वो कलीसियाएं कहाँ हैं जो सिद्धांतों का पक्ष लेती हैं? मेरे पास एक पैसे भर भी समय नहीं है इन हल्के फीके पानी जैसे जो समझौते की आत्मा में है। एक स्त्री स्त्री ही है, उसे स्त्री ही होने दें। यदि मनुष्य मनुष्य है, उसे मनुष्य बनने दें। यदि वो राष्ट्रपति है, कहाँ है हमारा जॉन क्विंसी एडम्स? कहाँ है हमारा अब्राहम लिंकन, सिद्धांत का मनुष्य? कहाँ है हमारा पैट्रिक हेनरी? या तो मुझे आजादी दो या मुझे मृत्यु दो। वे मनुष्य कहाँ हैं जो सही का पक्ष लेते थे? कहाँ है वो मनुष्य जो बोलने से नहीं डरते, चाहे सारा संसार उसके विरुद्ध हो? वही बोलेगा जो ठीक है, उसका पक्ष लेगा, उसके लिए मर जाएगा। और फिर हमारा एनरोल वोने विंकल रीड कहाँ है? वो मिलाने वाला व्यक्ति कहाँ है? उस आत्मा का मनुष्य कहाँ है? वे इतने हल्के फीके और सुन हो गए हैं, यहाँ तक कि वे ये नहीं जानते कि वे कहाँ खड़े हैं। परमेश्वर, मुझे एक मनुष्य के सिद्धांत में स्थिर रहने दो, यीशु मसीह के वचन के सेवक की तरह, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु वो कभी असफल नहीं होगा। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। आइए हम खड़े हो जाएं।
That binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred mind is life to that.
अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें।
When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again till we meet.
अब आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, जब तक भाई नेविल हमें प्रार्थना के द्वारा विसर्जित ना करें। आज रात वापस आएं, हम आराधनालय में एक महान रात्रि की आशा कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, ऐसा ना सोचें कि मैं कट्टर धर्मी हूँ, ऐसा ना सोचें कि मैं आप पर कुछ थोप रहा हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मेरा एक सिद्धांत है और वो बाइबल है। इसमें से एक भी शब्द निकाला नहीं जा सकता, ना ही एक शब्द इसमें मिलाया जा सकता है, और जैसी ये लिखी है मैं वैसे ही इस पर विश्वास करता हूँ। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं और हमारे ईमानदार अच्छे पास्टर सभा को विसर्जित करेंगे। भाई नेविल, परमेश्वर आपको आशीष दे।